जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यमुनातीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Ki Jai Krishna Kirtana Gana Nartana Paro Premamritam Bhunidhi Krishna Kirtana Gana Nartana Paro राधेर जन प्रियो प्रिय करो निर्मात्सरो पूजितो चैतन्य कृपावरौ विभुवो मरावहन्तारतो वन्दे सनातनौ रघुयुग श्रीजीव गोपालको
वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो
श्रीजीव गोपालको नाना शास्त्र विचारणे निपुण सधर्म संस्थापको लोकानामितकारेण त्रिभुवने अन्यशरण्याकरो लोकानाम् राधा कृष्ण पदारवे दभजना वन्दे नमत्तालिको
भजन
वन्दे रूप सनातनौ रघुयुग श्रीजीव गोपालको
वन्दे रूप सनातनौ
रघुयुगो श्रीजीव गोपालको श्रीगौरङ्गगुणानुवर्णनविधो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो पापतापनि कृन्तनौ तनुवृता गोविन्द गानामृते आनन्दाम्बुदिवर्धने कनिपुण कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातनौ रघुयुग श्रीजीव गोपालको वन्दे त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपतिम् ಶ್ರೇಣಿಂ ಸದಾ ತುಚ್ಛವಾತ್. ಮೂತ್ವಾದೀನ ಗಣೇಶಕೌ ಕರುಣಯಾ ಕೌಪೀನ ಕಂತಾಶ್ರಿತೋ ಗೋಪೀ ಭಾವರ ಸಾಮೃತ ದಿಲಹರಿ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಗ್ನೋ ಮೋಹೋರ್ ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನೋ ರಘುಯುಗ ಶ್ರೀಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೋ ಜತ ಕೋಕಿಲ ಹಂಸ ರಸಗಣ ಕಿರಣೆ ಮಯೂರಾಕುಲೆ ನಾನಾರತ್ನ ನಿಬದ್ಧಮು ಲವಿಟಪ ಶ್ರೀಯುಕ್ತ ವೃಂದಾವನೇ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ನಿಶಂ ಪ್ರಭಜತೋ ಜೀವಾರ್ಧದೋ ಯೋ ಮುದಾ ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನೋ ರಘುಯುಗೋ ಶ್ರೀಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೋ ವಂದೇ ಸಂಖ್ಯಾ ಪೂರ್ವಕ ನಾಮಗ ನನತಿ ಬೇ ಕಾಲಾವಸಾನಿ ಕೃತೋ ನಿದ್ರಾಹಾರ ವಿಹಾರಕ ದಿವಿಜಿತೋ ಚಾತಂಚ ದಿನೋಚಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಗುಣಾಸ್ಮೃತಿ ಮಧುರಿಮಾ ನಂದೇನ ಸಮ್ಮೋಹಿತೋ ವಂದೇ ರೂಪ ಸನಾತನೋ ರಘುಯುಗ ಶ್ರೀಜೀವ ಗೋಪಾಲಕೋ ವಂದೇ ಸನಾತನ चले दितनया तीरे चवम शिवटे माधव शादशेष दशया ग्रस्तो प्रमतो सदायन्तो च कदारेर्गुणवरम् भावाविभूतो मुदा वन्दे रूप सनातन रघुयुग श्रीजीव गोपालको वन्दे हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुथा श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदे वन्ये शन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे केदेर्महाविहुवलो वन्दे रूप सनातनौ रघुयुग श्रीजीव गोपालको श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुग जीव गोपालको हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे Yeah. गोस्वामी अष्टकम की, श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद की, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तेर्भवति नैष्ठिकी। ॐ ज्ञातविरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सगणाललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने। श्रीमाशभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषये नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्भङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामदनमोहनौ। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवौ प्रष्ट्रालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणोस्वनेर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। सप्तकाञ्चनगौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ತೊ ಕಲ್ ಹಮ್ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ. ಉಸ್ಕೆ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಸಮಯ ಮೇ ಕಲ್ ಹಮ್ನೆ ಷಟ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟಕಂ ಕಾ ಜೋ ಅರ್ಥ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ, ಔರ್ ಯೇ ಭಿ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ ಕಿ ಷಟ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟಕಂ ಕೋ ಗಾನೆ ಕಾ ಮಹತ್ವ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಖಾಸ್ ಕರ್ಕೆ ಜೊ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇ ಉನ್ಕೋ ಷಟ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟಕಂ ಕೋ ಯಾದ ಕರ್ ಲೇನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಉನ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಜೀವನ ಯಾಪನ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಯೇ ಭಿ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ ಕಿ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೇ ಜೊ ಷಟ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಹೈ ಯಾ ಭಕ್ತೋ ಕಿ ಚರಿತ್ರ ಹೇ ವೋ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಫಾಯ್ದಾ ಹೈ, ಕೈಸೆ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಲೀಲಾ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಕ್ತ ಲೀಲಾ ಭಕ್ತ ಕಾ ಲೀಲಾ ಕೋ ಪಹಲೆ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ನಾ ಹೋಗಾ, ಪಹಲೆ ಪಢನಾ ಹೋಗಾ ಯಾ ಸುನ್ನಾ ಹೋಗಾ, ಯೇ ಭಾಗವತ್ ಕಿ ವಿಧಿ ಹೈ. ಔರ್ ಭಕ್ತ ಕಾ ಲೀಲಾ ಕಾ ಶ್ರವಣ ಕರ್ನೆ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಹಮಕೋ ಉಸ್ ಭಕ್ತ ಕಾ ಜೊ ಕೃಪಾ ಹೈ ಹಮಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಿ ಹೈ, ಜಿಸ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಕೃಷ್ಣ ಹಮಾರೆ ಉಪರ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಯೇ ಭಿ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತ ಕಾ ಲೀಲಾ ಕಾ ಶ್ರವಣ ಕರ್ನೆ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಉಧರ ಅಪರಾಧ ಕಾ ಕೋಯಿ ಬಾತ್ ನಹೀ ರಹತಾ, ಲೋಗೋ ಕೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಗೃತ ಹೋತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಮೇ ರುಚಿ ತವಿ ಪ್ರಕಟ ಹೋಗಿ ಜಬ್ ಹಮ್ ಶುಶ್ರೂಷವೋ ಶಬ್ದ ದಾನಸ್ಯ, ಜಬ್ ಹಮ್ ಭಕ್ತೋ ಕಿ ಚರಿತ್ರ ಕೋ ಹಮ್ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ, ಜಿತ್ನಾ ಹಮ್ ಆಚಾರ್ಯೋ ಕಿ ಲೀಲಾ ಕೋ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ ಉತ್ತನಾ ಹಮಕೋ ಹರಿ ನಾಮ ಮೇ ರುಚಿ ಹೋಗಿ, ಭಾಗವತ್ ಮೇ ರುಚಿ ಹೋಗಿ. ತೋ ಯೇ ಸಬ್ ಬಾತೋ ಕೋ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ ಹಮನೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಕಲ್ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ. ಶ್ರೀಪಾದ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಕಾ ಚರಮ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ, ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೇ ಬಡೇ ಊಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರ ಮೇ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರ ಮೇ ಹುವಾ. ದೋ ಸಾಲ ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸೇ ಛೋಟೆ ಹೇ, ಪೂರಾ 70 ಸಾಲ ಕಾ ಉನ್ಕಾ ಪ್ರಕಟ ಲೀಲಾ ಥಿ. ಔರ್ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಕೋಯಿ ಔರ್ ನಹೀ ಹೈ, ರತಿ ಮಂಜರಿ ಹೈ ಯಾ ಲವಂಗ ಮಂಜರಿ ಹೈ. ಔರ್ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಜೊ ಹೈ 27 ಸಾಲ ತಕ್ ವೋ ವೈಸೆ ದಬೀರ್ ಸಕಾರ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ರಹೇ ಔರ್ ಗೃಹಸ್ಥ ಮೇ ರಹೇ, ಔರ್ ವೋ 43 ಸಾಲ ಸಾರಿ 43 ಇಯರ್ಸ್ ಉನ್ನೊನೆ ಜೊ ವೈರಾಗ್ಯ ಲೀಲಾ ವೃಂದಾವನ್ ಮೇ ವ್ರಜವಾಸ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ಸಾಥ್ ಸನ್ಯಾಸ ಲೀಲಾ ಕಿಯಾ. ತೋ ಯೇ ಸಬ್ ಚೀಜ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಹಮ್ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಕೋ ಭಾಗವತ್ ಸೇ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿ ಥಿ, ಭಾಗವತ್ ಮೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮ ಥಾ, ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ಕೋ ಏಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇ ಆಯಾ ಔರ್ ಭಾಗವತ್ ಜೈಸೆ ಉನ್ನೊನೆ ಪ್ರದಾನ ಕಿಯಾ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಉಸ್ಕೋ ಆಲಿಂಗನ್ ಕಿಯೆ ಉಸ್ ಭಾಗವತ್ ಕೋ, ಔರ್ ಖೂಬ್ ನಾಚನೆ ಲಗೆ ನೃತ್ಯ ಕರ್ನೆ ಲಗೆ ಭಾವ ವಿಭೋರ್ ಹೋಕೆ. ತೋ ಶ್ರೀಪಾದ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಕೋ ಯೇ ಜೋ ಸ್ವಪ್ನ ಆಯಾ ಥಾ ರಾತ್ ಕೋ, ಅಗಲಾ ದಿನ ವೋ ಸಾರ್ಥಕ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಮತಲಬ್ ವೋ ಸಚ್ ಹೋ ಗ್ಯಾ, ಯೇ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ. ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ ಶ್ರೀ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಕೋ ಯೇ ನವಾಬ್ ಹುಸೇನ್ ಶಾ ಉನ್ನೊನೆ ನಿಯುಕ್ತಿ ಕಿಯಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೋ ಬಡೇ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಥೆ, ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಭಿ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಉನ್ಕೋ ರುಚಿ ನಹೀ ಥಾ, ವೋ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಉನ್ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ನಾ ಪಡಾ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ನವಾಬ್ ಹುಸೇನ್ ಶಾ ನೆ ಧಮಕಿ ದಿಯಾ ಥಾ, ಅಗರ್ ಆಪ್ ಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಾ ಪದವಿ ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ ನಹೀ ಕರೋಗೆ ತೋ ಮೇ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಕೋ ತಕಲೀಫ ದೂಂಗಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಕೋ ಮಾರೂಂಗಾ, ಮಂದಿರೋ ಕೋ ನಾಶ ಕರೂಂಗಾ. ತಬ್ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಕೋ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಇಸ್ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ನಾ ಪಡಾ. ಔರ್ ಕನೇ ನಾಟ್ಯಶಾಲಾ ಮೇ ರೂಪ ಸನಾತನ್ ಕೋ ನವಾಬ್ ಹುಸೇನ್ ಶಾ ನೆ ಬಡಾ ಬಂಗ್ಲಾ ವಗೈರಾ ಬನಾ ಕೆ ದಿಯಾ ಥಾ, ಔರ್ ರೂಪ ಸನಾತನ್ ಜೋ ಭಿ ಕಹತೆ ಥೆ ವೋ ಉಸ್ ಸಮಯ ಕಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಹೋ ಜಾತಾ ಥಾ, ಉಸ್ ಸಮಯ ಕಾ ಪೂರಾ ಬಂಗಾಲ ಕಾ ಏಕ ಲಾ ಬನ್ ಜಾತಾ ಥಾ. ನವಾಬ್ ಹುಸೇನ್ ಶಾ ಪೂರಾ ರಾಜ್ಯ ಕಾ ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿ ಜೊ ಹೈ ರೂಪ ಸನಾತನ್ ಕೋ ಸೌಂಪ ಕೆ ವೋ ಅಪ್ನಾ ಜೊ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯ ಮೇ ಲಗಾ ರಹತಾ ಥಾ. ತೋ ರೂಪ ಸನಾತನ್ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸೇ ಅನೇಕೋ ಅನೇಕೋ ಜಗಾ ಸೇ ವೋ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೃತ್ಯ ನಾಟಿಕಾಓಂ ಕೋ ಕರಾತೆ ಥೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮೇ, ಔರ್ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ನೆ ಯೇ ಜೋ ರಾಮ್ ಕೆ ಲಿ ಗಾಂವ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಕನೈ ನಾಟ್ಯಶಾಲಾ ಮೇ ಅನೇಕೋ ಅನೇಕೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋ ಉನ್ನೆ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಕಿಯಾ. ಐಸಾ ಕರ್ತೆ ಕರ್ತೆ ಉನ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇ ಏಕ ಬಾರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೈಸೆ ಪ್ರಕಟ ಹುವೆ, ಔರ್ ಕೈಸೆ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇ ಪ್ರಕಟ ಹೋಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೋ ಉನ್ನೆ ನಿವೇದನ ಕಿಯಾ ಕಿ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಆನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವಪ್ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಜಬ್ ಸಮಯ ಆನೆ ಪರ್ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಸಂದೇಶ ಭೇಜೂಂಗಾ. ಬಾದ ಮೇ ಉನ್ಕಿ ಮಾ ಸೇ ಬಾತ್ ಕರ್ಕೆ उन चैतन्य महाप्रभु विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे। उनकी माँ के आदेश के अनुसार रूप सनातन ने चिट्ठी लिखा, उस चिट्ठी का जवाब मिला। बोने को चिट्ठी लिखने के बाद जवाब मिला, किस प्रकार आपको एक स्त्री के जैसा जीवन बिताना चाहिए जो पराये पुरुष के प्रति उनका मन या उनकी आसक्ति हो गई है, और वो आसक्ति को लोगों को दिखा ना दे या पता ना लगे, अपनी घरेलू काम अच्छी तरीके से करती हैं। और उस उदाहरण के द्वारा रूप सनातन को शिक्षा दिया चैतन्य महाप्रभु ने, किस प्रकार आपको अपना भौतिक कार्यकलाप करना है लेकिन हृदय में अपना कृष्ण प्रेम को बढ़ाना है। ये सब चर्चा करते हुए जैसे चैतन्य महाप्रभु का मुलाकात हुआ रामकेली ग्राम में, चैतन्य महाप्रभु खास करके रूप सनातन से मिलने के लिए ही वो रामकेली गांव में आए थे। किसी को मालूम नहीं पड़ रहा था चैतन्य महाप्रभु क्यों है, वो तो उनको वृंदावन जाना था, अभी बंगाल आके रामकेली ग्राम में क्या कर रहे हो मालूम नहीं पड़ रहा था। 10 दिन तक केवल रूप सनातन से मिलने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु रामकेली ग्राम में थे। और उस समय रूप सनातन से मुलाकात हुआ, सबसे पहला हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त करके, जब हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु लेके गए रूप सनातन को चैतन्य महाप्रभु मिलाने के लिए, तब रूप सनातन दोनों चैतन्य महाप्रभु साष्टांग प्रणाम किए, दंते तृण धरी, जैसे दांत में तृण धारण करके बड़े नम्रता के साथ प्रणाम करके वो अपनी नम्रता को व्यक्त किए, किस प्रकार निज जाति के है, और बड़े सुंदर तरीके से वो लोग वर्णन करने लगे चैतन्य महाप्रभु को। हे महाप्रभु, आपका प्राकट्य हुआ है दीनों को उद्धार करने के लिए, आपकी वदान्यता तभी सार्थक होगी जब आप हमको उद्धार करोगे। आपने जगह मदाय को उद्धार किया उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जगह मदाय जो हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं हमसे, और हमारा जो जीवन है बहुत अति नीच जीवन है। अगर आप हमको उद्धार करोगे तो वास्तविकता में आपकी जो पतित पावन का जो शब्द है वो सार्थक होगी। वो अनेकों तरीके से अपनी नम्रता को व्यक्त किए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये सनातन आपकी जो नम्रता देख के मुझे हृदय फट रहा है। और ये बातों को चर्चा करते हुए रूप सनातन को नाम यानी दीक्षा प्रकार का हो गया उनका, सकार मल्लिक का नाम पड़ा सनातन गोस्वामी और दबीर खास का नाम पड़ा रूप गोस्वामी। इन सब बातों को चर्चा करते हुए हमने ये भी चर्चा किया किस प्रकार रूप गोस्वामी पाद को पहले संदेश मिल गया कि उनको जाना है, पहले रूप गोस्वामी पाद निकल गए थे, और सनातन गोस्वामी पाद को जैसे मालूम पड़ा कि हुसैन शाह जगन्नाथपुरी यानी उड़ीसा राज्य के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है, तुरंत उनको ऐसा लगा कि मैं इस व्यक्ति का सेवा नहीं करूँगा, तो तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे, कि इस्तीफा नहीं, उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस जाऊँगा नहीं। उन्होंने एक पत्र लिखा था, ये मेडिकल लीव का उन्होंने बताया था, मैं बीमार हूँ करके ऑफिस नहीं जा रहे थे। तो उस समय सनातन गोस्वामी घर में बैठ के ब्राह्मणों के साथ पुरश्चर्य करने लगे। पुरश्चर्य का अर्थ हैं या संन्यास लेने से पहले या दीक्षा लेने से पहले अपने आप को शुद्धिकरण करने की जो प्रतिक्रिया है उसको पुरश्चर्य कहा जाता है। तो पुरश्चर्य के कार्य कर रहे थे सनातन गोस्वामी पाद, और नवाब हुसैन शाह वो सनातन गोस्वामी से बहुत क्रोधित करते हुए उनको बंदी बना दिया, गिरफ्तार कर दिया। किस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद बंदी बनाने के बाद जेल से छुटकारा प्राप्त किए, कैसे उल्टे सीधे रास्ते से निकलते निकलते रास्ते में वो जो एक गेस्ट हाउस वाला है उनके साथ से मुलाकात हुआ, श्रीकांत से मुलाकात हुआ, किस प्रकार उनको कंबल प्राप्त हुआ, और कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बनारस पहुँचे, और चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिले उसका वर्णन हमने कल चर्चा किया। तो कल चर्चा करते करते हमने आखिरी जो भाग है किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का मुलाकात हुआ वो हम थोड़ा सा उधर से चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। अभी चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य घर में निवास कर रहे हैं, उसी समय सनातन गोस्वामी पाद आए चंद्रशेखर आचार्य के घर के सामने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चंद्रशेखर आचार्य को, हे चंद्रशेखर आचार्य जाओ बाहर देखो एक महान वैष्णव खड़ा है, उनको अंदर लेके आओ। और जैसे चंद्रशेखर आचार्य गए बाहर तो उन्होंने देखा कोई वैष्णव तो दिखाई नहीं पड़ा, तो आके उन्होंने कहा महाप्रभु को, महाप्रभु इधर कोई वैष्णव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कौन है देख के आओ, कोई तो होगा। तो वापस जाके देख के आके बताया, उन्होंने कहा बाहर तो कोई वैष्णव नहीं, कोई एक धारावेश है। तो महाप्रभु ने कहा कि उनको ही बुलाओ, यही महान वैष्णव है। तो जैसे चंद्रशेखर आचार्य गए, जाके सनातन गोस्वामी पाते उधर बुलाया, और जैसे घर के अंदर प्रवेश किए तुरंत चैतन्य महाप्रभु जाके सनातन गोस्वामी पर आलिंगन किए, और सनातन गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु आलिंगन किया और भावीभोर होकर बड़े प्रेम में प्रणयाश्रम को गिराते हुए एक दूसरे के शरीर को प्रणयाश्रम के द्वारा नहाते हुए भावीभोर होते। वहाँ सनातन गोस्वामी तुरंत चैतन्य महाप्रभु कहा, महाप्रभु आप ये क्या करो, मुझे स्पर्श मत करो, मैं मेरा शरीर योग्य नहीं है, बहुत गंदा है। तब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को एक चौकी पे एक बार लिख के बैठाते हैं, बैठा के अपने हाथों से अपने शरीर को संवारते हुए महाप्रभु कहते हैं, हे सनातन, अक्षणों ही फलंतादृशा दर्शनम ही, आँखों का जो फल है या सिद्धि है भक्तों का दर्शन करना, तनो ही फलंतादृशा घात्रसंगान, घात्रसंगान आपका जो भक्तों का शरीर को स्पर्श करना ही हमारा शरीर का सिद्धि है, जिह्वम जिह्वा फलंतादृशा कीर्तनम ही, जिह्वा का वास्तविक सिद्धि है भक्तों का गुणगान करना, सुदुर्लभा ही भागवता ही लोके, भागवत जो है सुदुर्लभ होते हैं और उनका दर्शन प्राप्त करना, उनका गुणगान करने की जो मौका हमको प्राप्त हुआ है बड़े दुर्लभ है। और बाद में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पर कहते हैं कि ये तो कही कहे प्रभु सुनो सनातन, कृष्ण बड़ा दयामय पतित पावन। तब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, हे सनातन, कृष्ण बड़े दयामय है और तुमको कृष्ण ने ये जो महारौरव नामक की महान नरक है उससे तुमको बड़ा उद्धार किया है। तब सनातन गोस्वामी ने कहा, हे महाप्रभु, आप कहते हो कि कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर है, लेकिन कृष्ण कौन है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर निश्चित बात यह है कि आपने मेरे ऊपर कृपा किया, इसलिए मैं ये जो महारौरव नामक ये भौतिक संसार है, ये नरक है, इससे मैं मुक्त हो चुका हूँ। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी पाद को, हे सनातन, तुम्हारा भाई, दोनों भाई रूप और अनुपम, इनसे मुलाकात मुझे प्रयाग में हुआ और वो अभी निकले हैं वृंदावन की ओर। अभी तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र को बुलाया, चंद्रशेखराचार्य को बुलाया, बुला के कहा सनातन गोस्वामी पाद को अच्छा कपड़ा दो, उनका सर मुंडवा के अच्छी तरीके से शेव करके उनको नहाने का धोने का व्यवस्था करो। तो आप सबको मालूम है किस प्रकार सनातन गोस्वामी वो आगे अच्छी तरह से नहाए और नहाने के बाद नया वस्त्र प्रदान कर रहे थे चंद्रशेखर आचार्य, लेकिन सनातन गोस्वामी ने कहा मुझे नया नहीं चाहिए, पुराना कोई हमारा वस्त्र है तो मुझे प्रदान कीजिए। तो अब जब इस प्रकार की चर्चा हो रही थी, सनातन गोस्वामी को थोड़ा सा मालूम पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु बार बार उनके जो पास नया कंबल था उसको देख रहे थे। जब सनातन गोस्वामी ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, महाप्रभु प्रसन्न नहीं है नया कंबल से, इसलिए एक धोबी के पास गए, जाके उन्होंने कहा कि ये नया कंबल है आप ले लो और पुराना कंबल दे दो। तो धोबी ने कहा कि आप ये कौन सा सौदा है, ऐसा मुझे कुछ उल्लू बना रहे हो कि मजाक कर रहे हो। सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं, मैं सच में ये कह रहा हूँ, मुझे ये पुराना है फटा हुआ कंबल चाहिए, आप ये नया वाला ले लो। तो उनको कंबल लेके जैसे चैतन्य महाप्रभु के पास वापस आए तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कहा चैतन्य महाप्रभु ने कि हे सनातन, तुम चाहते हो कि मधुकरी करे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तपन प्रश्न में कहा था सनातन गोस्वामी को, आप जब तक बनारस पे हो मेरे घर में भोजन ग्रहण करो, लेकिन सनातन गोस्वामी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं मधुकरी करूँगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप मधुकरी करना चाहते हो और घर घर में जाके भिक्षा मांगोगे नया कंबल लेके, बड़ा महंगा कंबल लेके, तो लोग क्या बोलेंगे, आपके ऊपर उपहास करेंगे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके चैतन्य महाप्रभु के पास आने के बाद तपन चंद्रशेखर आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु का जो महाप्रसाद है वो सनातन गोस्वामी को प्रदान किया। जैसे प्रदान किया तब सनातन गोस्वामी भोजन ग्रहण करने के बाद एक जगह वो पहुँचे, जैसे महाप्रभु से मिलने के लिए पहुँचे, तो महाप्रभु से मिल के उन्होंने बहुत एक सुंदर प्रश्न किया। सनातन गोस्वामी, तबे सनातन प्रभु चरण धरिया दैन्य विनती करे दंडे तृणलिना। तो सनातन गोस्वामी प्रभुर चरण धरिया, चैतन्य महाप्रभु का चरण धारण करके कहा, नीच जाति नीच संगी पतिताधम कुविषय कुपे पड़ी गुआइन जनम। तो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं मैं नीच जाति का हूँ, नीच संगी का हूँ, मैं पतित हूँ और अधम हूँ और विषय कुपे पड़ी, विषय कुप में गिर पड़ा हूँ और पूरा जन्म मैंने इसी विषय कुप में बिताया है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु के पास जाके सनातन गोस्वामी बात किस प्रकार की विनती कर रहे हैं। आगे कहते हैं अपनारोहित हित किच्छु न जानी ग्राम्य व्यवहारे पंडित ए सत्य मानी। तो सनातन गोस्वामी बात कहते हैं कि मुझे मैं अपनारा हिता हिता किच्छु नहीं जानी, मेरा हित क्या है अहित क्या है मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और बात यह है कि लोग बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी पंडित है, वो तो मूर्ख है क्योंकि वो लोग मुझे पंडित कहते हैं, लेकिन ये मैं महामूर्ख हूँ क्योंकि उसको मान के बैठा हूँ। तो पंडितता है सत्यमानी, देखिए इतना बड़ा दीनता है। कृपा करी यदि मोरे करियाचे उद्धार आपना कृपा ते कहे कर्तव्य मार। तो सनातन गोस्वामी का ये जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है, कृपा करी यदि मोरे करियाचे उद्धार। सनातन गोस्वामी कहा हे महाप्रभु कृपा करी यदि मोरे करियाचे उद्धार, आप अगर मुझे उद्धार किया है तो अपना कृपा ते कहे कर्तव्य मार, मेरा कर्तव्य क्या है वो कहिए। अभी सनातन गोस्वामी का ये जो प्रश्न है बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी देखिए इस श्लोक में सनातन गोस्वामी पाद ने कहा महाप्रभु को यदि मोरे करियाचे उद्धार, यदि शब्द का अर्थ क्या है? यदि का अर्थ है कि संशय को सूचित नहीं करता, यदि आपने मुझे मेरे ऊपर कृपा किया है तो, ये संशय की बात नहीं है, आपने मुझे उद्धार कर दिया है, उद्धार कर दिया है तो मेरा कर्तव्य क्या बताइए। लोग सोचते हैं संतों का भगवान का कृपा प्राप्त करना ये हमारी सिद्धि है, जीवन का सिद्धि है। अभी इस श्लोक के ऊपर पुरी महाराज बहुत विद्वान हुए, प्रभुपाद के गुरु भाई है, ये बहुत विस्तृत व्याख्या करते हैं और कहते हैं सारे भक्त जब तक ये श्लोक को नहीं समझेंगे तब तक दीक्षा क्या है वो नहीं मालूम पड़ेगा। और उसके ऊपर व्याख्या करते हैं, बड़ा लंबा लेख है, व्याख्या नहीं लेख है उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा यदि शब्द के ऊपर व्याख्या करते हुए कहा कि बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इधर सनातन गोस्वामी पाद ये नहीं कह रहे चैतन्य महाप्रभु कि मुझे आपने यदि उद्धार किया है तो, यदि शब्द का अर्थ इधर इफ नहीं है, यदि शब्द का अर्थ ये है कि आपने मुझे उद्धार कर दिया है तो मेरा कर्तव्य क्या है बताइए। अभी उद्धार करने के बाद क्या कर्तव्य होता है ये प्रश्न है। ये वास्तविकता में गौड़ीय वैष्णव धारा का सिद्धांत है, दीक्षा का सिद्धांत ये है कि दीक्षा लेने के बाद कर्तव्य शुरू होता है। दीक्षा का अर्थ है कृपा। लोग सोचते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करना ही जीवन का सिद्धि है, नहीं, भगवान का कृपा प्राप्त हुआ है, संत का कृपा प्राप्त हुआ है तो आगे हमारा कर्तव्य है। अस्तित्व में वास्तविक जीवन शुरू होता है कृपा प्राप्त करने के बाद। लोग सोचते हैं कि हमारा सब सीमा है, या भगवान का संत का कृपा प्राप्त करना दीक्षा प्राप्त करना सिद्धि है, नहीं, दीक्षा प्राप्त करना कृपा प्राप्त करना जीवन का प्रारंभ है, वास्तविक जीवन का प्रारंभ है। अब देखिए सनातन गोस्वामी पाद कौन है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद हमारे दीक्षा के आचार्य है, संबंध ज्ञान के आचार्य है। दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा का अर्थ है जिस दिन हमारे गुरु कृष्ण के साथ हमारा संबंध को जोड़ते हैं, संबंध ज्ञान को प्रदान करने की जो प्रतिक्रिया है उसको दीक्षा कहा गया है। आगे चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के संवाद में आएगा तीन प्रकार का ज्ञान जो वेदों में है, संबंध विधेय प्रयोजन, और श्रीपाद सनातन गोस्वामी हमारे संबंध आचार्य है, और रूप गोस्वामी जो हैं अभिधेय के आचार्य है और प्रयोजन के आचार्य है रामानंद राय। जैसे सनातन गोस्वामी के आराध्य देव मदन मोहन जी हैं इसलिए संबंध के अधिदेव भी मदन मोहन जी हैं, और चैतन्य महाप्रभु संबंध और सनातन गोस्वामी की शिक्षा जो है संबंध के शिक्षा को प्रस्थापित करने वाला है, संबंध ज्ञान का
प्रस्तापन चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामीवाद के संवाद में किया। जैसे अभिधेय का जो ज्ञान है रूप शिक्षा में हमको प्राप्त होता है, इसलिए रूप गोस्वामी अभिधेय के आचार्य हुए, अभिधेय के आचार्य हुए। और आगे हम देखते हैं कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है हमारे प्रयोजन के आचार्य है, प्रयोजन का जो ज्ञान है चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के संवाद में उन्होंने प्रकाशित किया। तो इसलिए ये दो तीन संवाद अति महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन सा है? सबसे पहला सनातन गोस्वामी का संवाद, चैतन्य और सनातन गोस्वामी का संवाद, महाप्रभु और रूप गोस्वामी स्वरूप रूप शिक्षा जो है वो अभिधेय ज्ञान को प्रकाशित करने वाला है। और रामानंद राय के साथ जो संवाद है, जो गोदावरी के तट पे कोवूर में राजमंड्री में चैतन्य महाप्रभु ने किया था, उधर प्रयोजन ज्ञान को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया। वैसे तो देखा जाए तो रामानंद राय हमारे प्रयोजन आचार्य होना चाहिए, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन आचार्य है, क्योंकि रामानंद राय आचार्य का रोल को निभाया नहीं है, तो इसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रयोजन आचार्य है। और श्री श्री राधा गोपीनाथ जो है वो हमारे प्रयोजन के अधिदैव है। भले ही श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी के आराध्य देव गिरिधारी है, गांधर्वी का गिरिधारी है, राधा गिरिधारी है रघुनाथ दास गोस्वामी का आराध्य देव, लेकिन श्री श्री राधा गोपीनाथ को अधिदेव या प्रयोजन के अधिदेव अधिष्ठात देव को रूप में माना गया है। फिर हमें सनातन गोस्वामी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी पास जो है संबंध आचार्य है, संबंध आचार्य का अर्थ है कि दीक्षा, और रूप गोस्वामी का जो शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु रूप संवाद या रूप शिक्षा जो है वो शिक्षा गुरु जो है वो रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को देते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए इधर सनातन गोस्वामी पाद अपने व्यवहार के द्वारा ये कह रहे हैं या ये दिखा रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति को दीक्षा लेनी चाहिए या दीक्षा लेने की योग्यता क्या है। सबसे पहला देखिए सनातन गोस्वामी ने पुरश्चर्य किया। आप देखिए हमारी संस्था में भी ये देखी जाती है, दीक्षा लेने से पहले साल दो साल देखते हैं कि ये व्यक्ति सच में योग्य है कि नहीं। ये दीक्षा लेने से पहले जो 100 साल 2 साल का जो वेटिंग पीरियड है ना उसको पुरश्चर्य कहा जाता है। ये ऑटोमेटिकली हमारी संस्था में है अगर बराबर कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो ये पुरश्चर्य के समय बड़े तीव्रता से भक्ति की करनी होती है ताकि सारे वैष्णवों को पता लगे ये बड़े तीव्रता से भक्ति कर रहा है। पुरश्चर्य करने के बाद दूसरी बात है क्या है वो योग्यता जिसके द्वारा हम एक गुरु के पास जा सकते हैं। हम सनातन गोस्वामी पाद में दो चीज़ों को देखा, एक है वैराग्य और दूसरा है नम्रता। उन्होंने क्या किया, एक कंबल, क्या था वो कंबल, उन्होंने अपने आप से कुछ खरीदा नहीं था, मांग के भी नहीं लिया, वो श्रीकांत जो है ज़बरदस्ती दिया था, वो कंबल ही एकमात्र उनका एक महंगी चीज़ थी उनके पास, और कुछ था ही नहीं, सब कुछ छोड़ के आए। लेकिन फिर भी महाप्रभु उस कंबल को देख के उनके मन में थोड़ा सा लगा कि क्या है, तुरंत सनातन गोस्वामी ने क्या किया, वो कंबल को भी उन्होंने छोड़ दिया। ये परम वैराग्य का ये सूचक है। दूसरा क्या है, दूसरा है नम्रता। सनातन गोस्वामी पाद को भागवत के 18,000 श्लोक मालूम है, 13 भाषाओं में प्रवीण थे, लेकिन अभी क्या कहते हैं, नीच जाति नीच संगी पतित अधम कु विषय कुपे पड़ी, इतने विरक्त पुरुष है लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, कु विषय कुपे पड़ी, मैं विषय कुपे पढ़ के पूरा जन्म बिताया हूं, ये नम्रता का सूचक है। आगे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने 4 लोगों के द्वारा 4 बहुत महत्वपूर्ण वैष्णवों के जो गुण हैं उनको प्रकाशित किया। सबसे पहला रामानंद राय के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करना चाहिए। आप बोलोगे ये कहाँ दिखाई पड़ा, रामानंद राय देवदासियों को श्रृंगार करते थे, उनको तेल से मालिश करते थे, उनको जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कराने के लिए स्वयं अपने हाथों से श्रृंगार करते थे, फिर भी उनका मन जरा सा भी किसी भी तरीके से इंद्र तृप्ति के ऊपर विचलित नहीं हुआ। रामानंद राय का इंद्र तृप्ति जो है या इंद्रिय का नियंत्रण जो है, विषय वस्तु सामने रहने पर भी जरा सा भी मन विचलित नहीं होना, ये रामानंद राय ने आदर्श प्रस्तुत किया। ये पहला। दूसरा है श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदर्श प्रस्तुत किया किसके द्वारा, उन्होंने प्रस्तुत किया हरिदास ठाकुर के द्वारा। हरिदास ठाकुर के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है सहनशीलता, उसको प्रकाशित किया। 22 बाजारों में पीटा गया था हरिदास ठाकुर को, लेकिन हरिदास ठाकुर ने एक बार भी उन्हें कंप्लेंट नहीं किया, एक बार भी नहीं किया, हे भगवान मुझे क्यों इस प्रकार का पीटाया जा रहा है, मैं आपका नाम ले रहा हूँ। फिर भी इतना बार उन्होंने कहा कि आप, हम आपको मार देंगे, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर ने हरिनाम करना छोड़ा नहीं। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर पंडित, उनके द्वारा सारा जगत को शिक्षा दिया। क्या है वो दामोदर पंडित जो हैं, उनका एक विशेष गुण है, वो सबको यथारूप में सत्य बोल देते हैं। वो ये सोचते नहीं कि अरे बोलेगा तो बुरा मानेगा, ये होगा तो वो होगा, वो नॉन पॉलिटिकल, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल, तटस्थता। सत्य को बोलने के लिए तटस्थ होना चाहिए। अगर कोई आप सोचोगे ये मेरा पार्टी का है, मेरा ग्रुप का है, तो अगर वो गलती करता है तो आप सत्य नहीं बोल सकते उसको। तो दामोदर पंडित इतना हद तक कि चैतन्य महाप्रभु डांट देते थे, ए ठीक नहीं सन्यासी के लिए। तो ये तटस्थ व्यवहार, नॉन पॉलिटिकल व्यवहार, ये जो है वो दामोदर पंडित के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे जगत को प्रकाशित किया। भले ही ये तीनों गुण हैं, सहनशीलता है, इंद्रियों का नियंत्रण है, या तटस्थता है, तटस्थ भावना को रखना, ये भले ही तीन गुण हैं, लेकिन वैष्णव का आभूषण क्या है? वैष्णव का आभूषण है नम्रता। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जो त्रिनाद भी सुनी चेना, ये श्लोक का जो मूर्तिमान स्वरूप है सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये नम्रता को सारे जगत को प्रकाशित किया। नम्रता होता क्या है अगर जानना है तो सनातन गोस्वामी का जीवन चरित्र है। हमने ये चरित्र से सीखा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के पास अप्रोच किए, हाउ चैतन्य सनातन गोस्वामी अप्रोच श्री चैतन्य। जैसे हम भगवद्गीता में सुनते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन, ये प्रणिपातेन, ये प्रणिपातेन का दो महत्वपूर्ण बात है। क्या है? एक है नम्रता से जाना चाहिए, दूसरा क्या है? बड़े विरक्त भावना से जाना चाहिए। विरक्ति जब तक नहीं रहेगी, नम्रता जब तक नहीं रहेगी, तब तक जो है ये दीक्षा का जो प्रणाली है हमारे ऊपर पूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे हम जानते हैं दीक्षा मतलब बीजारोपण, कृष्ण भक्ति का बीजारोपण, वो अगर पत्थर के ऊपर गिरे बीज तो क्या होगा? भले वो पत्थर है, अच्छा बीज है, उसके ऊपर कितना ही पानी डालो, वो पेड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में फलीभूत नहीं होगा। इसलिए ये दो महत्वपूर्ण जो गुण हैं सनातन गोस्वामी ने प्रदर्शित किया। और जैसे सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के पास से आके शरण लिए, तुरंत महाप्रभु ने क्या किया? उनको स्वीकार किया। तब सनातन गोस्वामी पाद ने प्रश्न पूछा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन का अर्थ क्या है? सनातन गोस्वामी ने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? उन्होंने दो प्रश्न पूछे, के अमी केम ने जाने तपत्र यह नाय जाने केम ने हतहाय। ने कहा कि के अमी, मैं कौन हूं? दूसरा, केम ने जाने तपत्राय, मैं दुख क्यों भोग रहा हूं? ये दो प्रश्न पूछे। अभी देखिए, सनातन गोस्वामी पाद को भागवत के सारे 18,000 श्लोक मालूम है, याद है, कंठस्थ है, परम विरक्त है, भागवत को स्पर्श करने मात्र से उनके अष्टसात्विक विकार प्रकट हुए। लेकिन जब बात आई महाप्रभु से प्रश्न पूछने की, उन्होंने ये नहीं पूछा जो है कृष्ण के राइट साइड में क्यों है, राधा रानी लेफ्ट साइड में क्यों नहीं है, कृष्ण बांसुरी क्यों बजाते, गिटार क्यों नहीं बजाते, ऐसे प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने। जो प्रश्न होना चाहिए फिलोसॉफिकल, जब तक दार्शनिक नहीं होता है प्रश्न, ये वास्तविकता में उसको उसका जवाब क्या दें। तो फिलोसॉफिकल प्रश्न, जितने भी फिलोसॉफिकल प्रश्न हैं संसार में, वो सारे फिलोसॉफिकल प्रश्न का सार यही है, के अमी केम ने जाए तापत्राय, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, व्हाई एम आई सफरिंग। श्रील प्रभुपाद जी अपने जो भगवद्गीता के जो इंट्रोडक्शन है उसी में इस बात को लिखते हैं, वन हैज टू आस्क दीज टू क्वेश्चन, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ एंड द काज ऑफ सफरिंग, दीज आर द टू प्राइम इंक्वायरीज इन लाइफ। ये दो सारे जितने भी जिज्ञासा है इस जगत में, सारे जिज्ञासाओं का सार यही है, मैं कौन हूँ और मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ। तो सनातन गोस्वामी पाद ने प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने और एक प्रश्न पूछा जो पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था, अमार कर्तव्य, मेरा कर्तव्य क्या है बताइए। और जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी ने प्रश्न पूछा, तब सनातन गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु जवाब देते हैं। आगे हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु को है कृष्ण कृपा तमाते पूर्ण है सब तत्व जाने तुम्हारा नहिता पत्र। तब महाप्रभु ने कहा सनातन कृष्ण की कृपा से तुमको सारे तत्व मालूम है, ऐसा कौन सा चीज है तुमको जो मालूम नहीं है, अस्तित्व में तुम्हारा कोई तापत्र नहीं है, कोई किस प्रकार का दुख नहीं है। कृष्ण शक्ति धरी तुम्हें ज्ञान तत्व भाव जाने धारे लगी पचे सुदृढ़ साधुर स्वभाव। ये साधु का स्वभाव होता है कि वो दूसरों के लिए इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। योग्य पात्र है तुम्हें भक्ति प्रवर्तित क्रमे सब तत्व सुनी कहते तुमाते। तो सनातन तुम ये जो तत्व जानने के लिए बड़े योग्य हो, इसलिए मैं सारे तत्वों को कहूंगा तुम उसको सुनने के लिए प्रयास करो। तब सारे भक्तों के बड़ा प्रसिद्ध श्लोक मालूम है, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश सूर्यांश किरण अग्नि ज्वल छाय स्वाभाविक कृष्ण नेत्रण प्रकार शक्ति है। तब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा देना शुरू किया। सनातन शिक्षा इधर से शुरू होता है। सनातन गोस्वामी ने प्रश्न पूछा था क्यामी मैं कौन हूँ, उसका जवाब सीधा चैतन्य महाप्रभु देते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा चैतन्य सनातन गोस्वामी को डायरेक्टली उन्होंने दे दिया, वही चैतन्य महाप्रभु हैं कृष्ण के रूप में आके अर्जुन को यही शिक्षा दिए थे। आपको याद होगा भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन तुम ये शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो। तुमने ये कहा कि शरीर तुम ये शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, नहीं ये नहीं कहा कि आत्मा है क्या। आत्मा का लक्षणों का वर्णन किया लेकिन है क्या ये आत्मा वो स्पष्ट रूप में नहीं कहा, अनेकों अनेकों जगह केवल इंडिकेशन दिया था कि ममे वामशो जीवलोके, अलग अलग जगह उन्हें कहा था कृष्ण ने। लेकिन जो कृष्ण ने अर्जुन को भगवद्गीता में बताया, जहाँ भगवद्गीता समाप्त होती है उधर सनातन शिक्षा शुरू होती है। कैसे कैसे, इसी प्रकार जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा तुम ये शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, लेकिन आत्मा है क्या वो स्पष्ट रूप में कृष्ण नहीं कहा था, इसलिए उसको स्पष्टीकरण करने के लिए वही चैतन्य महाप्रभु आके सनातन गोस्वामी पाद को समझाए, वही कृष्ण सनातन चैतन्य महाप्रभु रूप में आके सनातन गोस्वामी को समझाए। क्या बताया, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। बाद में उन्होंने कहा ये तो जीव का स्वभाव हुआ, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश। अभी देखिए कृष्णेर तटस्था शक्ति, अभी ये जो जीव है वो शक्ति कैटेगरी के अंदर कहता है। ऐसे भगवान के तीन प्रकार की शक्ति हैं, विष्णु शक्ति परा अप्रोक्ता क्षेत्रज्ञ तथा परा तृतीया कर्म संज्ञा तृतीया शक्ति रिष्यते। ये जो श्लोक में विश्वपुराण में कहा गया है किस प्रकार तीन शक्तियां हैं भगवान की, एक है अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति तटस्था शक्ति, प्राय आप सब जानते हैं। लेकिन ये जीव जो है वो तटस्था शक्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन जब ये जीव ये तटस्था शक्ति होने पर कभी वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहता है, कभी बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रहता है। लेकिन अब जब जीव अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहता है तो वही जीव जो है बड़े आनंद में रहता है। लेकिन वही जीव जब तटस्था शक्ति जीव जो है वो बहिरंगा शक्ति का शरण लेता है तो वो दुख को अनुभव करता है। तब चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया किस प्रकार इस भौतिक जगत में सब लोग कृष्ण को भूल के दुखी हो रहे, बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि राजा कभी कभी दंड देते हैं, क्या दंड देते हैं कि एक व्यक्ति को पानी के अंदर डुबा देते हैं, बस डुबा दिया और जैसे भी प्राण छोड़ने वाला है तब उसको उठाया जाएगा, तो उसको ऐसा लगता है हाँ, और जैसे उसने इसको अच्छा लगता है तुरंत वापस डुबाते हैं। यही भौतिक जगत ऐसा है कि जैसे व्यक्ति को दुख लगता है, उसको लगता है कि बस मैं सुइसाइड कर लूं, प्राण त्याग कर लूं, तब उसको थोड़ा सा सुख का महसूस होता है। हम बोलते हैं हाँ अभी अभी मैं जीऊंगा, अच्छी तरीके से जीऊंगा। और जैसे उस सुख का खाली आभास मात्र होता है, अभी मिला नहीं उनको, तो तुरंत वापस डुबाया जाता है, तो फिर वो तड़पता रहता है। इससे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी कहा, ये जो दुखमय जीवन है इतना इतना है कि वो बहुत साल संसार में रहने के बाद उनको कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, उसको ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं केवल दो प्रकार का अनुभव है, सुख और दुख। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, नहीं नहीं नहीं, खाली सुख और दुख नहीं है, और तीसरे प्रकार का है, क्या है वो? हल्लाद करी ताप करी मिश्रा। कभी ये भौतिक जगत हल्लाद, यहाँ आनंद को प्रदान करता है, कभी तुरंत जैसे आनंद को प्रदान करता है दुख को प्रदान करता है। ताप करी, ताप मतलब दुख को प्रदान करता है। जब ये हल्लाद और ताप, ये सुख और दुख में पूरा झंझट में पूरा अनेकों अनेकों साल बिताता है, वो बाद में पूछो आप कैसे हो, वो कन्फ्यूज हो जाता है, इसलिए बोला मिश्रा। उसको मालूम नहीं अभी मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, ऐसी परिस्थिति में रहता है। कृष्ण बोले ऐसे जीव आनंद बाहिर्मुख अतएव माय तारे देह संसार दुख, कबू स्वर्ग उठाया कबू नरके डुबाया, दंड जानी राजा न नदी ते चुबाए। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी बात को, जीव तत्व क्या है और जीव जो है क्यों दुखों का अनुभव कर रहा है, इस प्रकार के ज्ञान को देते हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु से सनातन गोस्वामी ने पूछा था कि साध्य क्या है, साधन क्या है, वो सब बताइए। उसके विषय में चैतन्य महाप्रभु शुरू करते सनातन गोस्वामी पाद को, बड़ा सुंदर श्लोक है, वेद शास्त्र कहे संबंध विदय प्रयोजन, कृष्ण प्राय संबंध भक्ति प्राप्तेर साधन। प्राप्य कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्यर साधन, तीन चीजें हैं। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, सारे वेदों में तीन ही विभाग है। एक है संबंध, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, ये संबंध ज्ञान है। दूसरा है उस संबंध को पुनस्थापन करने की विधि क्या है, उसको अभिधेय कहा गया है। और अंततः ये विधि को पालन करने के द्वारा हम क्या चीज को प्राप्त करने वाले हैं, उसको प्रयोजन कहा गया है। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महादान। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, देखो संबंध जो है भगवान के साथ संबंध है, कृष्ण के साथ हमारा संबंध है, और ये भक्ति ही एकमात्र अभिधेय है और प्रेम ही प्रयोजन है। और उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण के साथ कहते हैं, मध्वाचार्य का एक वेदांत सूत्र का एक टीका के ऊपर आधारित होते हुए चैतन्य महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं कि अन्य प्रकार के जो साधन हैं कर्म ज्ञान और योग, ये जो है भयानक है। अगर कोई कर्म ज्ञान योग का साधन के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, उनका पूरा जीवन दुखमय रहता है। जैसे कोई सर्वज्ञ नामक एक व्यक्ति था, तो उसके पास एक एस्ट्रोलॉजर आया, एक ज्योतिष आया, और उन्हें कहा कि आपके पिताजी ने एक बड़ा खजाना रखा है एक घर में, तो वो खजाना को प्राप्त करना है, अगर आप दक्षिण से खुदाई करोगे बड़े सांप आएंगे, और आप उसको पूरब से या पश्चिम से अगर खुदाई करोगे, खुदाई करके उसको प्राप्त करना जाओगे बड़े घोस्ट इत्यादि आएंगे, यानी भूत प्रेत आएंगे, उत्तर से करने लगोगे तो बहुत सारे बिच्छू इत्यादि आएंगे, अगर आपको सच में उसको प्राप्त करना है पूर्व दिशा से आप खुदाई करोगे उसको प्राप्त कर पाओगे। ऐसा एक बहुत सुंदर उदाहरण के बाद कहा कि किस प्रकार जो कृष्ण प्रेम हमारी वास्तविक संपत्ति है, अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसका एक ही रास्ता है, वो है भक्ति। भक्ति के द्वारा ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग त्यजी, भक्ति एक कृष्ण वश है भक्ति एक तरण भजी। जो व्यक्ति भक्तों भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। और भागवत से सुंदर श्लोक को कोट किया गया है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य महाप्रभु श्लोक को कोट करते, न साध्येति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। जिस प्रकार भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है, अन्य सांख्य के द्वारा योग के द्वारा स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे सनातन शिक्षा बड़ा प्रसिद्ध है। चैतन्य महाप्रभु ये सनातन शिक्षा में अनेकों अनेकों रत्नों को प्रकाशित करते हैं। ये सब कहने के बाद तब प्रश्न आता है कि वेद में संबंध के विषय में कहा गया है, अभिधेय के विषय में कहा गया है और प्रयोजन के विषय में कहा गया है। मैं जानना चाहता हूँ ये जो संबंध का जो मूल है भगवान श्री कृष्ण वो कौन है, क्योंकि कृष्ण तत्व को जब तक नहीं जानेंगे तब तक संबंध का अर्थ मतलब नहीं, नहीं। तो कृष्ण के विषय में सनातन गोस्वामी पाद कहना जितने महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी पाद को कृष्ण के विषय में कहते हुए ब्रह्म संहिता को श्लोक का कोट करते हुए कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्णा परमेश्वरे भगवान श्री कृष्ण, और उनके बारे में सुनो। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में चैतन्य महाप्रभु बड़े विस्तार से सनातन गोस्वामी को सुनाते हैं। खास करके कृष्ण तत्व को चैतन्य महाप्रभु विस्तार से सुना के अभी तक जितने भी कृष्ण तत्व के विषय में कन्फ्यूजन्स थे वैष्णव संप्रदायों में भी, मध्व हो निम्बारक हो या रामानुज संप्रदाय में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, वो सारे कन्फ्यूजन्स को चैतन्य महाप्रभु ने दूर कर दिया। इसलिए कहा जाता है ये जो सनातन शिक्षा है या रूप शिक्षा भी या रामानंद शिक्षा भी रामानंद संवाद भी, ये प्रत्येक भक्त को याद कर लेना चाहिए। ये याद करने से वो पक्का गौड़ीय वैश्य सिद्धांत को बोल सकता है। कोई भी भागवत का श्लोक अगर गौड़ीय धारा के अनुसार वर्णन करना है वो तभी हो सकता है जब वो चैतन्य चरितामृत में खास करके रूप शिक्षा सनातन शिक्षा को अच्छी तरीके से पढ़ लेता है। ये इतना सुंदर तरीके से सिस्टमैटिकली प्रस्तुत किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर बच्चा भी मूर्खोपि बालोपि अगर पढ़ लेता है, अगर वो पढ़ के उसके ऊपर कृष्ण के बारे में बोलना शुरू करता है तो लोग बोलेंगे ये महान पंडित है। हाँ कभी कभी ये ऐसा आश्चर्य की बात है, आप 6-7 महीने कोई जुड़ा है मंदिर के साथ भक्ति के जुड़ा हुआ है, प्रभुपाद के 2-3 ग्रंथ पढ़ लिया, वो कहीं विद्वानों के बीच में जाके कुछ बोल देता है, विद्वान सोचते थे ये कहाँ सीखा तुमने, हाँ इतना सब कुछ कहाँ से, कितने साल से पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा पूछते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, ये सत्य अनेकों लोगों ने अनुभव किया है। क्यों? क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष कृपा है। चैतन्य चरितामृत में प्राय पहले के अध्यायों में या पहले आदिलीला के पहले के कुछ अध्यायों में प्रत्येक श्लोक की शुरुआत में कहा गया है बालोपि तारयिष्ये सिद्धांत सागरम, मूर्ख या बालक व्यक्ति भी सिद्धांत का सागर को पार कर सकता है, मूर्खोपि चैतन्य महाप्रभु कृपा से वो बड़े बड़े सिद्धांत के रत्नों को वो समझ सकता है, वैसा वर्णन किया गया। इसलिए चैतन्य चरितामृत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, खास करके ये सनातन शिक्षा पढ़ लेना चाहिए। एक बड़ा सा कन्फ्यूजन था सारा विश्व में खास करके वैष्णव समाज में, वो है कृष्ण के विस्तारों के विषय में। आप सब लोगों से पूछते हैं ना, जैसे आप कृष्ण के विषय में बात करोगे बोलते हैं कि कृष्ण दो तो विष्णु का अवतार है, हाँ ऐसा प्रसिद्ध प्रचलित बात है। लेकिन वो जो कन्फ्यूजन है या अनेकों भगवान के रूपों के विषय में, वो सारा कन्फ्यूजन चैतन्य महाप्रभु ने दूर कर दिया। कहाँ दूर किया? सनातन शिक्षा में। क्योंकि पंचरात्र का मूल सब्जेक्ट है कि कृष्णा फॉर्म्स ऑफ कृष्णा, कृष्ण के स्वरूप। पंचरात्र का कोई भी ग्रंथ लीजिए, अनेकों पंचरात्र, 108 पंचरात्र है, उन सारे पंचरात्र में जो पहला भाग होता है वर्णन, वो अलग अलग भगवान के रूपों का वर्णन होता है। उसके बाद अर्च विग्रह का रूप का वर्णन होता है, अलग अलग अर्च विग्रह का रूपों का वर्णन होता है, अलग अलग प्रकार के शालिग्राम का वर्णन होता है। ये पंचरात्र का सब्जेक्ट है। तो द फॉर्म्स ऑफ कृष्णा, भगवान के जो विस्तार है उनके स्वरूप है, ये इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन था। नारायण कौन है, वासुदेव कौन है, संकर्षण कौन है, और कुछ लोग वर्णन करते शास्त्रों से लेके वर्णन किया, देखो कृष्ण जो है वो नारायण के विस्तार है, ऐसा वर्णन है, शास्त्र में वर्णन है, उसको ही प्रस्तापित करने वाले हैं। लेकिन उन सारा कन्फ्यूजन को चैतन्य महाप्रभु ने दूर कर दिया। किसको? सनातन समाज में। वैसे ये अलग ही प्रकार का सब्जेक्ट है, ये कभी और चर्चा किया जा सकता है, या कभी आपको मौका मिले टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद ने 2 अध्याय लिखा, हिज फॉर्म्स आर वन एंड द सेम द अवतार्स, 2 प्रकार के 2 चैप्टर्स है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का विस्तार से समझाया किस प्रकार कृष्ण के 3 रूप है, स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, आवेश रूप। स्वयं रूप के अंतर्गत 2 प्रकार है, उसका पूरा चार्ट है, बड़ा अद्भुत चार्ट है, कभी और उसके ऊपर चर्चा किया जाए, क्योंकि हमको पूरा सनातन शिक्षा को ही लेंगे तो पूरा हमारा चार दिन निकल जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इधर सनातन शिक्षा को संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आगे कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के सारे विस्तारों का वर्णन किया, किस प्रकार ये तदेतात्म रूप के अंतर्गत भी दो प्रकार है, एक है स्वयं प्रकाश, एक है विभव, दूसरा है प्रभव। विभव प्रकाश के अंतर्गत किस प्रकार भगवान जो है 24 रूपों को धारण करते हैं, जो प्रथम चतुर्व्यूह जो है वो द्वारका के चित्रपाल के रूप में रहते हैं, किस प्रकार प्रथम चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है उससे द्वितीय चतुर्व्यूह उत्पन्न होते हैं, और ये द्वितीय चतुर्व्यूह जो है वैकुंठ के चार कोने में निवास करते हैं, बीच में कृष्ण जो है नारायण के रूप में निवास करते हैं, और किस प्रकार ये जो आने कोने को जो व्यूह है भगवान का, वो व्यूह जो है उनके बीच में अंतर क्या है, वो शंख चक्र गदा पद्म कैसे धारण करते हैं, उसका जो पोजीशन है, कोई अपर राइट हैंड ऊंचे वाला जो बायां हाथ है उसके ऊपर का गदा है, दूसरे रूप में चक्र रहेगा, उस अंतर की वजह से अलग अलग रूप है, उनका पूरा विस्तार से वर्णन करते हैं, अवतारों के विषय वर्णन करते हैं। अवतारों के विषय वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा 6 प्रकार के अवतार है, ने कहा कि बनवंतर अवतार है, उसके बाद शिक्तावेश अवतार है, उसके बाद युगावतार है, गुणावतार है, लीलावतार है, और इसका वर्णन करते करते पुरुषावतारों का वर्णन किया, किस प्रकार 3 प्रकार के पुरुषावतार है, कारणोदाक्ष विष्णु, गर्भोदाक्ष विष्णु, शिरोदाक्ष विष्णु, 3 प्रकार के गुणावतार हैं ब्रह्मा शिव और विष्णु, और ये जो विष्णु जो हैं ब्रह्मा शिव विष्णु में, ये विष्णु जो हैं वो कोई और नहीं है बल्कि शिरोदाक्ष विष्णु ही, ये परमात्मा के रूप के सबके हृदय में रहते हैं, और वो साथ साथ में गुणावतार भी हैं, और बाद में मन्वंतर अवतार जो है 14 मन्वंतर अवतारों का लिस्ट देते हैं पूरा करके। जब युगावतारों का वर्णन आना शुरू हुआ, जब युगावतार का वर्णन हुआ, निकाद सत्ययुग में जो है भगवान जो है वो सफ़ेद रंग में आए, त्रेतायुग में लाल रंग में आए, द्वापर युग में काले रंग में आए, और कलयुग में पीले रंग में आए करके आगे जा रहे थे। सनातन गोस्वामी ने कहा कि महाप्रभु जरा आप जो कलयुग का अवतार के विषय में जरा विस्तार से कहेंगे। तो महाप्रभु एकदम, सनातन ज्यादा होशियारी मत दिखाओ आगे निकल पड़े। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु आगे वर्णन करने लगे। अभी ये बात की बात है, अभी मैं आवेश अवतारों के बारे में सुनाता हूँ। महाप्रभु ने कहा 2 प्रकार के शक्तावेश अवतार है, एक है गौण, दूसरा है मुख्य। जो मुख्य प्राइमरी जो शक्तावेश अवतार है, डायरेक्ट शक्तावेश अवतार, उनका उदाहरण है अनंत और शेष, और जो गौण शक्तावेश अवतार है वो व्यासदेव है, चार कुमार है, नारद है इत्यादि, इन शक्तावेश अवतारों को वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन सुनो, जितने भी ऐश्वर्य इस जगत में दिखाई पड़ता है असत में, वो सब भगवान के विभूति है। तुने कहा यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव तत्तेवाभिगच्छत मम तेजोंस संभवम, ये श्लोक को कोट करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को भगवान के अलग अलग प्रकार के विस्तारों का वर्णन किया। ये सब करने के बाद सनातन गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु भगवान के वैभव के विषय में वर्णन करते हैं। वैभव के विषय में वर्णन करते हुए महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी को सुनो, भगवान का वैभव क्या है, वैकुंठ के इस जगत के विस्तार को वर्णन करते हैं, इस जगत के विस्तार का वर्णन करके वैकुंठ का विस्तार का वर्णन करते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो वैकुंठ क्या, ये पूरा ब्रह्म ज्योति है, वो कोने में बहुत ही जगत पड़ा हुआ है, और ये वैकुंठ भी अनेकों अनेकों वैकुंठ है, वो भी कहाँ है, वृंदावन के कोने में पड़ा हुआ है, पूरा मेजरमेंट सब वर्णन करते हैं। उसको और अच्छी तरीके से वर्णन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने 2 उदाहरण दिया, दोनों ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया। पहला ब्रह्म विमोहन लीला सुनाया, अब सबको बालों में पहला ब्रह्म विमोहन लीला, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने देखा, क्या देखा, वैकुंठ जो है वृंदावन के कोने में पड़ा हुआ है, पूरा ब्रह्म विमोहन लीला का सार यही है, क्या दर्शन कराना चाहते थे भगवान ब्रह्मा जी को, कि ये जो वृंदावन है इतना माधुर्यमय है, इसकी जो वास्तविक ऐश्वर्य क्या है, वृंदावन का वास्तविक ऐश्वर्य है वैकुंठ, उसके एक कोने में पड़ा हुआ है, और ब्रह्मा जी को भगवान ने दिखाया, क्या दिखाया, ये वैकुंठ का जो बछड़ा होता है ना, वो बछड़े से विष्णु मूर्ति निकल रहे हैं विष्णु के रूप बछड़े से निकल रहे हैं। देखो ये गोलोक का ये तो वृंदावन का महिमा है। उसके बाद ब्रह्म विमोहन लीला, दूसरा ब्रह्म विमोहन लीला भी सुनाया हम, जब भगवान द्वारका में थे, ब्रह्मा जी को ऐसा था कि मैं अकेला ब्रह्मा हूँ उनके आके उन्होंने कहा कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। गेर ने पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि जाके भगवान को बताओ कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो गेट कीपर जाके भगवान को कहा कि ब्रह्मा जी आए, तो कृष्ण समझ गए ब्रह्मा को गलत फहमी है, वो अकेला ब्रह्मा है। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ उनको पूछो कि कौन ब्रह्मा आया है। तो गेट कीपर ने पूछा ब्रह्मा जी से कौन ब्रह्मा है आप, उनको बोलो चतुर्मुख ब्रह्मा है, मेरे अलावा और कोई ब्रह्मा है क्या, चतुर्मुख चार मुख वाला ब्रह्मा है। तो भगवान ने बोला जिसको उसको अंदर भेजो। जैसे ब्रह्मा जी अंदर आए तो उन्होंने देखा कि कृष्ण ऐसे बैठे हैं और अनेकों अनेकों ब्रह्मा रहे, एक का 10 मुख था, एक का 100 था, एक तो 1000 था, एक को लाखों मुख वाले ब्रह्मा है और आके भगवान का प्रणाम कर रहे हैं। उनके जो मुकुट है वो जमीन पे स्पर्श कर रहा है और बहुत सारा आवाज आ रहा है। इतना ही नहीं ब्रह्मा जी ने भी देखा बहुत सारे शिव जी भी आ रहे थे 5 मुख वाले 10 मुख वाले अनेकों अनेकों शिव जी भी आए। तब ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा मैं सबसे छोटा ब्रह्मा हूँ ऐसे तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो खाली उसका जो ब्रह्मा है 4 मुख वाले हैं। पूरा सनातन गोस्वामी की शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान करते हुए साध्य साधन के विषय में उन्होंने चर्चा किया। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के विषय में थोड़ा सा ने चर्चा किया। चर्चा करते हुए चैतन्य महाप्रभु अभी सनातन गोस्वामी से विदा ले रहे हैं। ने कहा कि सनातन गोस्वामी को 1 महीना तक चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान किया। प्रदान करते हुए महाप्रभु ने कहा कि तुम वृंदावन जाओ। पहले रूप गोस्वामी पास भी वृंदावन गए हैं, अभी तुम भी वृंदावन जाओ और सेवा करो। आपको मालूम है पहले हमने ये श्लोक को चर्चा किया था, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। सबसे पहला चैतन्य महाप्रभु के पास कैसे सनातन गोस्वामी प्रकट हुए या अप्रोच किए, वो नम्रता और बड़े वैराग्य के साथ। बाद में परिप्रश्नेन हुआ, परिप्रश्नेन में संबंध ज्ञान का प्रकाशन हुआ। तो संबंध ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान का साक्षात्कार कैसा होगा? ज्ञान प्राप्त करने मात्र से सब कुछ नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका साक्षात्कार होना चाहिए। वो साक्षात्कार कैसे होगा? साक्षात्कार होगा सेवा के द्वारा। कुछ लोग बोलते हैं रोजी हम तो श्रवण कीर्तन करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। लेकिन ये आपने जो श्रवण कीर्तन किया है वो श्रवण कीर्तन का साक्षात्कार कैसे होगा? वो तभी हो पाएगा जब हम सेवा करेंगे। इसलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवया परिप्रश्नेन, सेवा करते परिप्रश्न करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दिया। ने क्या सेवा दिया? आप जाओ, आप जाओ वृंदावन जाके सारे जितने भगवान के जो लीला स्थली हैं उसको आप उद्धार करो, मंदिरों का निर्माण करो और मेरी शिक्षाओं के ऊपर आधारित होते हुए वैष्णव आचरण कैसे होना चाहिए उसके विषय में तुम ग्रंथों की रचना करो। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ये आज्ञा सुनते हुए सनातन गोस्वामी को जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आज्ञा को पालन करना है, सेवा करने के लिए वो पहुँचे वृंदावन। और जैसे वृंदावन पहुँचे सबसे पहला चैतन्य सनातन गोस्वामी के बाद का मुलाकात हुआ सुबुद्धि राय से। सुबुद्धि राय सुबुद्धि राय से उनका मुलाकात हुआ। तो सुबुद्धि राय चैतन्य सनातन गोस्वामी बात को व्रज के सारे स्थानों पे लेके गए और सनातन गोस्वामी कुछ समय के लिए व्रज में रहे। व्रज में रह के उनको बुलावा आया चैतन्य महाप्रभु से, तुम आओ कहाँ? जगन्नाथपुरी। अभी से शुरू होगा चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार सनातन गोस्वामी के साथ जगन्नाथपुरी में लीलाओं को संपन्न किए, ये बड़ा अद्भुत है। वैसे हमने सनातन शिक्षा में देखा चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान किया, लेकिन महाप्रभु किस प्रकार पुरी में सनातन गोस्वामी के साथ लीला किया, ये बड़ा अद्भुत तरीके से चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में चौथे अध्याय में हुआ है। तब सनातन गोस्वामी को जैसे बुलावा आया, सनातन गोस्वामी के पास निकल पड़े। तो वो सोचने लगे, अभी महाप्रभु के पास जाऊंगा तो मैं क्या कैसे जाऊं। तो बड़े आतुरता थी महाप्रभु से मिलने की, लेकिन सनातन गोस्वामी पास उनको रास्ता नहीं मालूम था, कैसे करना है क्या करना है मालूम नहीं था। वो केवल महाप्रभु का स्मरण करते हुए निकल पड़े वृंदावन से। जब निकल पड़े महाप्रभु की दिव्य योजना के द्वारा, उनको अपने आप रास्ता मालूम पड़ रहा था। कभी कभी वो होश में थे, कभी होश में नहीं थे। उनको मालूम नहीं पड़ रहा था कि मैं खाया है कि नहीं खाया। कभी कभी खा लेते थे, कभी कभी नहीं खाते थे, और क्या खा रहे क्या पी रहे वो नहीं मालूम था। लेकिन क्या हुआ, झारखंड की जंगलों से चलते चलते उनको महाप्रभु के जो लीला जो झारखंड में किए उसके स्मरण में उनको कोई बहिरंगी जोश नहीं था। इसलिए कृष्णदास कविराज को हम लिखते हैं, झारखंडेरा जलेरा दोष उपवास हैते घात्रे कंडो हैला रस पड़े कांजो याते। तो झारखंडेरा जलेरा दोषे, झारखंड का जो जल का जो दोष की वजह से या कुछ गलत पानी पीने की वजह से, अब उपवास हैते उपवास की वजह से क्या हुआ, पूरा घात्र में पूरा शरीर में उनको इचिंग, उनको पूरा खुजली का रोग हुआ। उसकी वजह से खुजली करते करते पूरा बहुत पूरा शरीर में उनको पस हो गया था। ऐसा उनका शरीर बहुत दुर्बल अवस्था में थी। तब सनातन गोस्वामी सोचने लगे, वैसे तो मैं बहुत नीच परिवार का हूँ और ये शरीर तो वैसे योग्य नहीं है। अभी तो ये शरीर तो और शिथिल अवस्था में हो गया है। अभी मैं इस अवस्था में मैं कैसे जाऊँगा, मैं क्या मुख से क्या कैसे मैं महाप्रभु से मिलूँगा। महाप्रभु के वैसे तो नीच लो, मेरा चेहरा दिखाना भी दोष है। अभी ये अवस्था में महाप्रभु से मिलना ठीक नहीं है, और महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी मंदिर के नज़दीक में रहते हैं। अगर मैं उनसे मिलने जाऊं, उधर के जो जगन्नाथ के सेवक है वो मेरा चेहरा को देख के जगन्नाथ जी के पास जाएंगे या शुद्ध चेहरे को देख के जाएंगे, ये ठीक नहीं है। ऐसा सोचते सोचते वो सोचने लगे, मंदिर निकट सुनीता नारा वास स्थित, सुना महाप्रभु जी मंदिर के निकट रहते हैं और मैं जाके उसके साथ दिखाना ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे मेरा शरीर त्याग कर देना चाहिए। ताते यदि ये देह बालस्थाने दिया, इससे अच्छा है कि अच्छे स्थान में जाके मैं शरीर को त्याग कर दूंगा। कैसे भी करके जगन्नाथपुरी में अगर शरीर त्याग किया जाए तो बड़ी बड़ी बात है, दुख शांति हो आर सदगति पाए। मेरा ऐसे तो शरीर बहुत दुर्बल हो चुका है, बहुत दुख दे रहा है, दुख की भी शांति हो जाएगा और सदगति भी हो जाएगा। ऐसा करके सनातन गोस्वामी पाद सोचने लगे, जगन्नाथ रथ यात्रा है बेरे बारे तानार रथ छकाय छाड़ीनो ये शरीर। मैं ये शरीर को जगन्नाथ जी के रथ जब रथ यात्रा होगी और जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा और ये जो पहिया है जगन्नाथ जी के रथ के जो पहिया के नीचे अपने शरीर को डाल दूंगा और मैं अपना शरीर त्याग करूंगा। महाप्रभु रागे आरे देखी जगन्नाथ राते देखी छाड़ीनो ये परम पुरुषार्थ। मेरा परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए महाप्रभु को दर्शन करूंगा, जगन्नाथ दर्शन करते हुए ये शरीर को त्याग करूंगा। ये थे निश्चय करी नीला चल आईला लोके पूछे हरिदास स्थाने उतरला। तो ऐसे सनातन गोस्वामी पास पूरी पहुंचे, लोगों से पूछा कि हरिदास ठाकुर कहाँ रहते हैं। तो लोगों ने कहा इधर रहते, तुम जाओ उधर रहो। तो सनातन गोस्वामी पास पहुंचे जहाँ हरिदास ठाकुर रहते हैं। हरिदास कैला तेना चरण वंदन जानी हरिदास स्थान रे कैला लिंगन। आपको मालूम है कि हरिदास ठाकुर ही चैतन्य महाप्रभु को परिचय कराया था, सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु से परिचय कराया था रामकेली ग्राम में। तो हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी देखे बड़े आनंदित हुए और सनातन गोस्वामी को चरण को वंदन किया, हरिदास ठाकुर का चरण को वंदन किया। और महाप्रभु देखिते तनारा उत्खंडिता मन हरिदास कहे प्रभु आसी बेन एक हन। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि मुझे बहुत उत्कंठता हो रही है महाप्रभु को दर्शन करने की। तब हरिदास ठाकुर ने कहा, आप चिंता मत करो, अभी चैतन्य महाप्रभु रोज इधर आते हैं और तुरंत ही शीघ्र ही आते ही होंगे। हे न काले प्रभु उत्पाला भोगा देखिया हरिदास मिलते आयला भक्त गणालना। चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को लेके रोज हरिदास ठाकुर के पास आते थे। आपको मालूम है सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर निवास स्थान है, उधर ही सनातन गोस्वामी पास उधर ही पहुंचे और सुबह का जो उत्पल भोग है वो सनातन चैतन्य महाप्रभु लेके हरिदास ठाकुर के पास पहुंचे। और जैसे पहुंचे दोनों ने प्रणाम किया, हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी दोनों ने प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बड़े प्रेम से उठाया और आलिंगन किया। तब हरिदास ठाकुर ने कहा, देखो आपका दास जो है नीचे प्रणाम कर रहा है। हरिदास कहे सनातन करे नमस्कार, सनातन देखी प्रभु होइला चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु को मालूम नहीं था, ऐसे उन्होंने बुलाया कि आ जाओ, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि सनातन गोस्वामी आए हुए हैं। और सनातन को देख के चैतन्य महाप्रभु बड़े आश्चर्यचकित हुए। सनातन आलिंगित प्रभु आगो होइला पाछे भागे सनातन कहे ते लागीला। तो सनातन को आलिंगन करने के लिए वापस चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ रहे थे, सनातन गोस्वामी पीछे पीछे जा रहे थे। हो महाप्रभु ने कहा कि मोर ना छुए प्रभु पड़ो न तुम्हारा पाए, एक नीच जाति अदम आर कंडो रसगाय। एक तो नीच जाति का हूँ, दूसरी बात मेरा पूरा शरीर जो है बड़े बड़े कंडो रसा पूरा इधर से रस निकल रहा है, खून का पस का निकल रहा है, ये मेरा शरीर ठीक नहीं है, ये अब योग्य नहीं है। तो ने कहा बालत करे प्रभु भलत्कारे करे भलत्कारे प्रभु तनर आलिंगन कैला खंडो केला महाप्रभु श्रियंगे लागिला। तो बलात्कार से बड़े जोर से महाप्रभु ने कहा कि छोड़ो, तुरंत गए सनातन गोस्वामी को जोर से। सनातन गोस्वामी नहीं चाहते, महाप्रभु ने आलिंगन किया। देखिए महाप्रभु दिव्य शरीर सच्चिदानंद स्वरूप में, सनातन गोस्वामी का शरीर पूरा पस से भरा हुआ, इतना दुर्बल अवस्था में है, लेकिन महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया और सनातन गोस्वामी का शरीर से जो खून है पस है वो महाप्रभु के शरीर में लग गया। तब सारे भक्तों को परिचय कराया सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी कहा देखो ये है नित्यानंद प्रभु है, ये है इस प्रकार हरिदास ठाकुर है, सबको अच्छी तरह से परिचय कराया। और जैसे जैसे परिचय चल रहा था सनातन गोस्वामी सब भक्तों को प्रणाम किया। प्रभु लाना विशाल पिंडर ऊपर भक्तगण इंडरा ताले वसीला हरिदास सनातन। तब सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु एक ऊंचे स्थान में बैठे और हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी नीचे जमीन के ऊपर बैठे और वार्ता पूछने लगे। कुशला वार्ता महाप्रभु पूछे रा सनातन तेना कहे न परम मंगल देखी न चरण। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, सनातन गोस्वामी ने पूछा तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा सनातन गोस्वामी से कैसे हो तुम। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि परम मंगल देखिनो चरण, मेरा जीवन धन्य है, मेरा मंगलमय है। क्यों? क्योंकि आपका चरण का दर्शन हुआ, आपका दर्शन हुआ और आप प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है। असल में जब भक्तों के बीच में व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए, जब कोई व्यक्ति पूछता है आप कैसे हो तो तुरंत क्या जवाब दे, आपका दर्शन हुआ तो सब ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मथुरा के वैष्णव सब कैसे हैं, सारे विचार करने लगे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद से। ने कहा प्रभु कहे यहाँ न रूप चलिला दशमास। तो रूप गोस्वामी भी इधर आए थे, 10 मास तक 10 महीने तक उधर रुके और केवल 10 दिन पहले वो रूप गोस्वामी पाद इधर से चले वापस वृंदावन, अपना जो बंगाल होते हुए वृंदावन जाएंगे। वो 10 दिन पहले रूप गोस्वामी निकले, तुम इधर आए हो, तुम्हारा भाई अनुपम होइला गंगा प्राप्ति। तब महाप्रभु कहते हैं तुम्हारा भाई जो अनुपम जो रूप गोस्वामी साथ में थे वो अनुपम वो अपना शरीर त्याग कर दिया है, गंगा प्राप्ति मतलब शरीर त्याग कर दिया है। तो उनका विशेष प्रेम है रामचंद्र से, ऐसा महाप्रभु ने कहा। तब सनातन गोस्वामी आगे कहने लगे अनुपम बड़े महान भक्त है रामचंद्र जी का, हमको मालूम है कि मैं और रूप गोस्वामी हम दोनों भागवत की चर्चा करते हुए अनुपम को कहते थे देखो कृष्ण लीला कितना मधुर है और कृष्ण का भक्ति करो। भागवत को सुना के ऐसा कर रहे थे तो एक दिन हमारे पास आया, कहा कृष्ण मंत्र को प्रदान करो, ठीक है मैं कृष्ण का भक्ति करूँगा। तब अनुपम जब कृष्ण का भक्ति करने के लिए मंत्र जप लेके गया, लेकिन रात भर सोया नहीं, जब कृष्ण का नाम जप करता है तो उनको रामचंद्र का स्वरूप याद आता। तब अगला दिन अनुपम हमारे पास आया और कहने लगा कि मेरा जो रामचंद्र को मैंने अपने मस्तक दे दिया है, अपने आप को मैंने रामचंद्र को बेच दिया है, अभी ये करने से मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या करूं। तब भगवान रामचंद्र के अंदर हमने अनुपम में निष्ठा देखा, निष्ठा देख के कहा कि ठीक है आपकी जो भक्ति है अविचलित है। रामचंद्र कहा रामचंद्र का ही भजन करो। तब ऐसा हमने कहा हे माता बार बार कही दुई जन हमारा दुहारा गुहारा किच्च परे गिला मन। इस प्रकार हम दोनों ने आदेश दिया। रघुनाथ का बहुत बड़ा भक्त है, उनको निश्चित रूप में भगवान का धाम प्राप्त हुआ है करके चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा। चैतन्य महाप्रभु ने आगे भी कहा कि आपने का भाई जो है अनुपम, वो जैसे रामचंद्र का भक्त है, मेरा भी एक बड़ा बड़ा भक्त है मुरारी गुप्त करके, वो भी ऐसे भगवान रामचंद्र का भक्त हैं, और ये सारे भक्तों का बड़ा ये हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रज में जाओगे कि अगर जो कृष्ण के भक्त है गौड़िया में पूरा ये है, अगर आप थोड़ा सा रामचंद्र का गुणगान करो तो तुरंत बोलेंगे ए ये सब मत करो। ऐसा ट्रीट करेंगे कि बस ये वैष्णव ही नहीं है, कोई मायावादी है। लेकिन महाप्रभु की लीला में हम देख सकते हैं कि मुरारीगुप्त और ये वल्लभ श्री वल्लभ भाई अनुपम, ये दोनों भगवान रामचंद्र के भक्त हैं। और महाप्रभु ने उनको ये दिया। आगे तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बोलते हुए ये तब बोली महाप्रभु उथिला उठाए चलिया गोविंद द्वारे दुआ प्रसाद पटाइला। इस प्रकार महाप्रभु इस प्रकार बोल के वो निकल गए और गोविंद के द्वारा महाप्रसाद को भेजने लगे। ये मते सनातन रहे प्रभु रस्ताने जगन्नाथेरा चक्र देखी करेन प्रमाणे। तो जगन्नाथ का चक्र का दर्शन करते हुए सनातन गोस्वामी इस प्रकार रोज चैतन्य महाप्रभु से चर्चा करते हुए बड़े आनंद से जीवन बिता रहे थे। प्रभु से प्रति दीना मिलना दुई जन, रोज आते थे चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण कथा का चर्चा होता था। दिव्य प्रसाद पाए नित्य जगन्नाथ मंदिरे तातामि नित्यावेश धनरादो कारे। तो चैतन्य महाप्रभु ब्रिंग प्रसाद एंड डिलीवर टू द टू डिवोटीज एवरी डे, रोज इस प्रकार का चल रहा था। एक दिन बड़ा अद्भुत घटना हुई। एक दिन से प्रभु दुनारा मिले थे सनातन चंबित कैल लगते। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु से मिले, तुरंत सनातन गोस्वामी से महाप्रभु कहने लगे, क्योंकि महाप्रभु को मालूम पड़ा कि सनातन गोस्वामी के पास इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? रथ यात्रा का इंतजार कर रहे हैं और अपना शरीर को रथ के चपहिये के नीचे डाल के वो मरना चाहते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा हे सनातन सुनो, ये जो आप सुइसाइड करना चाहते हो, अपना शरीर त्याग करना चाहते हो, ये कृष्ण प्राप्ति का उपाय नहीं है। देह त्यागे कृष्ण नहीं पाए, पाए भजने भजन के द्वारा कृष्ण प्राप्त होते हैं। कृष्ण प्राप्ते र उपाय कोनो नहीं भक्ति बिना। अगर कोई व्यक्ति सुइसाइड करने के द्वारा कृष्ण प्राप्त होता है तो मैं हजार बार अपने शरीर को त्याग करता, केवल भक्ति के द्वारा ही कृष्ण प्राप्ति होती है। भक्ति बिना कृष्ण कबू नहीं प्रेम उदय। भक्ति के बिना कृष्ण प्राप्त नहीं होते, प्रेम का उदय नहीं होता है। प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य हित है, और प्रेम के बिना कृष्ण का प्राप्ति नहीं होता है। तो वापस वही बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, न साध्येति माम योगो, वो श्लोक को कोट करते हैं। देह त्यागी तमो धर्म पातक का कर्म। ये जो देह त्याग करना, सुइसाइड करना जो है, या अपना शरीर त्याग करना जो है अपनी मर्जी से, ये जो है वो तमोगुण का कार्य है, और ये पातक कर्म है, बड़े पाप कर्म है। साधक ना पाए तत् कृष्ण चरण, ये कभी भी कृष्ण का चरण को प्राप्त नहीं कर सकता, ये बड़े पापी है। प्रेम भक्त वियोग चाहे देह छाड़ीते। कभी कभी ऐसा होता है, प्रेम भक्ति होता है जिसके अंदर, वो भगवान के विरह में वो कभी कभी सोचता है कि क्या फायदा, अपना शरीर को त्याग कर देंगे, ऐसा कभी कभी भक्त सोच सकता है। लेकिन उनकी प्रेम की तीव्रता में कभी जब ऐसा भाव आता है कि अरे कृष्ण के विरह में ये कृष्ण नहीं तो जीना क्या 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 जरूर, क्या जीने की क्या फायदा। लेकिन जैसे उस प्रकार की तीव्रता होता है तो कृष्ण का स्मरण मन में होता है। जैसे कृष्ण का स्मरण मन में होता है तुरंत वो विचार छोड़ देता है कि मुझे आत्महत्या नहीं करना है, शरीर त्याग नहीं करना है, इस प्रकार के विचार त्याग कर देता है। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं और दो श्लोक को कोट करते हैं। ये श्लोक है रुक्मिणी देवी का पत्र से। रुक्मिणी देवी कृष्ण को निवेदन करती है, एक पत्र लिखती है, आप सबको मालूम है, बड़ा प्रसिद्ध पत्र है। उस पत्र का आखिरी श्लोक में रुक्मिणी लिखती हैं, अगर आप मुझे आके लेके नहीं जाएंगे तो मैं अपना ही शरीर त्याग कर दूंगी। हाँ, तो सनातन गोस्वामी पाद को कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, अच्छा तुम रुक्मिणी जैसा अगर सोचते हो। रुक्मिणी देवी इस प्रकार का भाव को व्यक्त किया, यस्यां गृपंकज रजस्नबरं महंतो वांचन्ति मापतिरिवात्मतमोपहत्ये यर्यांभुजाक्षर लभेत भवत् प्रसादं जय्यामसुन्द्रतकशं शतजन्मभिस्यात्। जय्यामसुन, ये अपने प्राण को मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा 100 बार भी जन्म लूंगी लेकिन आपकी प्राप्ति के लिए इंतजार करूंगी, इस प्रकार रुक्मिणी कहती है। अगर ऐसा सोचते हो, देखो गोपियों की प्रार्थना देखो, गोपियाँ प्रार्थना करती हैं। हाँ, रासलीला के प्रारंभ के 29वां अध्याय में सिंचन्नस्तव अदरामृत पूरकेण हासावलोक कलगीत चहृच्छयाग्निम नोच्चे द्वयं विरह जाग्नि उपयुक्त देह ध्यानेन याम पदयो पदवीं सकेते। ध्यानेन याम पदयो पदवीन सके थे। गोपियां विरह में कहती हैं, हे भगवान, आप कितना भी विरह दो, हमारे को मन में आता है कि हमको शरीर त्याग करना है, लेकिन जब इतना विरह की भावना उत्कृष्ट हो जाता है उस समय आपका जो चरणारविंद का हम हृदय में स्मरण करते हैं। तो महाप्रभु शास्त्रों को प्रमाण देते हुए कह रहे कि हे सनातन सुनो, अगर तुम सोच रहे हो कि शरीर त्याग करने से कृष्ण प्राप्त होंगे, नहीं होगा। और ये सोच रहे हो कि नहीं, मेरे अंदर इतना भक्ति है इसकी वजह से मैं शरीर त्याग कर रहा हूँ, ये भी नहीं है। अगर इतना भक्ति है, जैसे विरह की सीमा एक स्तर पे पहुँचती है जहाँ भक्त सोचता है कि मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगा, कृष्ण के बिना जी नहीं सकता हूँ, उस समय वो तीव्रता को देख के कृष्ण जो है हृदय में प्रकट हो जाते हैं। यानी चैतन्य महाप्रभु हमारा गौड़ीय सिद्धांत को प्रकाशित कर रहे हैं। क्या है गौड़ीय सिद्धांत? विरह में मिलन और मिलन में विरह, वो गौड़ीय सिद्धांत है। बड़ा गुह्य वस्तु है, कभी और चर्चा करेंगे विषय में। ये दो श्लोकों में महाप्रभु ने बड़ा सुंदर सिद्धांत को प्रस्तावित किया। और महाप्रभु ने कहा, इस प्रकार का जो तुम्हारा विचार है, दुर्विचार है, वो सब त्याग करो और कृष्ण का नाम का श्रवण कीर्तन करो और निश्चित में कृष्ण का शरण प्राप्त होगा। नीच जाति नहीं कृष्ण भजने अयोग्य, सत्कुले विप्र नहीं भजने रे योग्य। हाँ, महाप्रभु ने कहा, अगर कोई नीच परिवार में जन्म लिया है, अगर वो भक्ति करता है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है, लेकिन बड़े विप्र के परिवार में जन्म लिया है, ब्राह्मण है लेकिन कृष्ण का भजन नहीं करता है, कृष्ण को वो प्राप्त नहीं कर सकता है। ये भजे से बड़ा भक्त ही न चक्र कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादि विचार। कृष्ण भजन के बीच में कोई कुल का विचार नहीं होता है, हर व्यक्ति कृष्ण को भजन करने के लिए योग्य है। दीनादि का दया करे भगवान, अस्तित्व में जो दीन होता है ना, जो नीच जाति का होता है ना, अपने आप को दीन मानता है ना, महाप्रभु कहते हैं दीनेर आदि का दया करे भगवान। दीनों के ऊपर भगवान ज्यादा अधिक दया करते हैं। कुलीना पंडित धनीरा बड़ा अभिमान, जो कुलीन होता है बड़ा परिवार में जन्म लिया रहता है और पंडित होता है और इनका धनाढ्य व्यक्ति होता है, उनको अभिमान रहता है, इसकी वजह से उनको कृष्ण प्राप्त नहीं होते। इसलिए हे भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवदा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण धीरे धरे महाशक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये जो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भजन है, ये महाशक्ति है कि इसके ऊपर, इसके अंदर का कुल का विचार नहीं किया जाता है। ऐसा कहते हुए महाप्रभु वो आगे आगे आते हुए सनातन गोस्वामी पाद को आलिंगन करने लगे। तब सनातन गोस्वामी पाद वापस कहा कि महाप्रभु ये क्या कर रहे हो, मत करो मत करो करके महाप्रभु ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा शरीर को आलिंगन करूँगा। आलिंगन किए, सनातन गोस्वामी पाद बहुत दुखी हो रहे थे, रोज महाप्रभु आते थे इस प्रकार कर रहे। तो उन्होंने एक दिन ने क्या किया, जगदानंद पंडित उनसे पूछा, मुझे क्या करना चाहिए, रोज महाप्रभु आते हैं, आके मुझे आलिंगन करते हैं, मुझे बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता है, महाप्रभु का शरीर दिव्य है, इतना सुंदर है, अद्भुत है, उनका मेरे स्पर्श की वजह से रोज उनके शरीर में मेरा जो पस है, रक्त है, वो जम जाता है, क्या करें। तब जगदानंद पंडित ने कहा देखो तुम इधर से चले जाओ, वृंदावन चले जाओ वापस। तब जैसे जगदानंद पंडित ने इस प्रकार का बात बताया, तो अगला दिन जब महाप्रभु आए चैतन्य सनातन से मिलने के लिए, हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए, तब महाप्रभु ने कहा, सनातन गोस्वामी ने कहा कि अभी महाप्रभु मैं वृंदावन वापस जाऊंगा। सनातन गोस्वामी ने कहा क्यों चैतन्य महाप्रभु ने क्यों क्यों जाना चाहते हो? जगदानंद पंडित ने कहा कि अभी वृंदावन जाने से मैं इस प्रकार का अपराध से बच जाऊंगा। तब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए, कौन है जगदानंद, इसको बुलाओ। उसको ऐसा डांटने लगे, उसको क्या मालूम है भक्ति होता क्या है, हाँ भगवान का प्रेम क्या होता है, उसको कुछ नहीं मालूम, ऐसा उनको टूट डांटने लगे। तो उस समय जगदानंद पंडित आए, तो सनातन गोस्वामी बोलने लगे जगदानंद तुम्हारा कितना बड़ा महिमा है देखो, हाँ अस्तित्व में महाप्रभु या कोई भी व्यक्ति किसी को डांटता तभी है जब वो अपना मानता है, महाप्रभु ने मुझे नहीं डांटा, इसका अर्थ है कि महाप्रभु मुझे कभी अपना नहीं माना। हे जगदानंद तुम्हारे भक्ति का महिमा देखो कितना अद्भुत है कि महाप्रभु ने स्वयं तुमको डांटा है। तो जगदानंद पंडित की तो महाप्रभु की चैतन्य सनातन गोस्वामी बात की इस बात को देख के महाप्रभु कहने लगे हे महाप्रभु हे सनातन तुम्हारा जो नम्रता का कोई सीमा नहीं है, ऐसा वर्णन करते जो इन दोनों के बीच में हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी बीच में भी संवाद होता है, बड़ा अद्भुत संवाद है जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी पाद को हे सनातन अस्तित्व में तुमको आलिंगन करता हूँ, आलिंगन करता हूँ तो ये समझो कि कृष्ण मुझे शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे? एक सन्यासी को किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ तटस्थ भावना रखना चाहिए, ये अच्छा है बुरा है इस प्रकार के विचार सन्यासी को रखना नहीं चाहिए। अभी तुम्हारे द्वारा कृष्ण मुझे परीक्षा ले रहे हैं, क्या सनातन को आलिंगन करेगा कि नहीं? हाँ सनातन की ये शारीरिक अवस्था को देख के क्या चैतन्य महाप्रभु क्या दूर रहेंगे? ये कृष्ण मेरे परीक्षा ले रहे हैं। अस्तित्व में हे सनातन सुनो, हरिदास ठाकुर सुनो, माँ जो है बच्चों से इतना प्रेम करती है, माँ बच्चे को अपनी गोद में बैठाती हैं, जब बच्चा जो है वो पेशाब करता है, जब वो संन्यास करता है माँ के शरीर में गिरता है, वो प्रेमवश उसको बड़ा सुगंध के रूप में मानती है, वो गंदा नहीं मानती है। इसी प्रकार सनातन ये समझो मैं तुमको आलिंगन किया है, इसमें ये बता रहा हूँ कि मेरा तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रेम है, तुम्हारी ये जो दीनता है वो देख के मेरा हृदय फट रहा है। क्योंकि सनातन ने कहा था जगदानंद पंडित को कहा हे जगदानंद महाप्रभु तुमको डांटे, क्यों डांटे? क्योंकि तुमको अपना मान लिए, मुझे नहीं अपना माना इसलिए वो डांटते नहीं है। इस बात की जवाब देते हुए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा हे सनातन ये जो तुम्हारा विचार है बड़ा अद्भुत विचार है, मुझे परीक्षा मेरी परीक्षा लेने के लिए कृष्ण तुमको मेरे पास भेजा है। तब महाप्रभु ने कहा सनातन मुझे और एक मौका दो तुमको आलिंगन करने की, मेरा प्रेम व्यक्त करने की। चैतन्य सनातन गोस्वामी ने कहा कि मत कीजिए, पीछे भाग रहे थे, लेकिन महाप्रभु जोर जबरदस्ती आए और सनातन गोस्वामी को जैसे आलिंगन किए उनका शरीर जो एकदम बिल्कुल पुष्ट हो गया। और जैसे कुछ समय इस प्रकार चलने लगा तो सनातन गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप वृंदावन जाइए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये सुंदर प्रकार सनातन गोस्वामी के चरित्र को बड़े अद्भुत तरीके से वर्णन करते हैं, किस प्रकार छह सनातन गोस्वामी पाद वो जगन्नाथपुरी से वृंदावन वापस गए, और सनातन गोस्वामी वृंदावन वापस जाने के बाद उनसे मुलाकात हुआ था रूप गोस्वामी पाद से, और रूप गोस्वामी से मुलाकात होने के बाद वो दोनों बड़े प्रेम आनंद से रोज कृष्ण कथा का चर्चा करते थे। खास करके वृंदावन में जो अभी आपको ये जो राधा गोविंद जी का जो मंदिर है, हाँ वो पहले मंदिर निर्माण होने से पहले रूप गोस्वामी पाद को जो आराध्य देव जो प्रकट हुए गोविंद जी उसको योगपीठ कहा जाता है। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी सब लोग आके उधर कृष्ण कथा का चर्चा किया करते थे, इतना हद तक कि जब भी लोग वृंदावन जाके आते थे बंगाल में या जगन्नाथपुरी आया करते थे, लोग पूछते थे कि रूप सनातन कैसे हैं, रूप सनातन कैसे, तब लोग वर्णन करते थे किस प्रकार रूप सनातन अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कभी कभी एक पेड़ के नीचे कभी रहते हैं, कभी खाया कभी नहीं खाया, इस प्रकार पूरा संन्यास जीवन को वहाँ बिता रहे हैं। खास करके सनातन गोस्वामी पाद व्रज में बड़े प्रसिद्ध हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए कि सभी लोग सनातन गोस्वामी को चाहते थे। मान लो कोई गांव में सनातन गोस्वामी पाद गए, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था और सनातन गोस्वामी पाद पूछते थे, और उनका याददाश्त इतनी थी प्रत्येक व्यक्ति का नाम मालूम था, और प्रत्येक व्यक्ति से नाम से पूछते तो कैसे हो, बड़े लोगों को बड़े आदर देते थे और वो लोग सनातन गोस्वामी के पुत्र के रूप में मानते थे, और कुछ लोग हैं सनातन गोस्वामी के मित्र के रूप में मानते थे, और कुछ लोग सनातन गोस्वामी को बड़े भाई के रूप में मानते थे। असत में पूरा व्रज के वासियों का, व्रजवासियों का एक संबंधी जैसा बन गए सनातन गोस्वामी। कब सनातन गोस्वामी एक जगह एक गांव में पहुंचे, दूसरे गांव में जब जाते हैं सारे गांव वाले रो पड़ते थे। एक जगह एक गांव में जब पहुंचे, खास करके बैठन नामक एक गांव है, उधर पहुंचे तो सनातन गोस्वामी जा रहे थे, सारा गांव रोने लगा और आके सनातन गोस्वामी पकड़ लिए, आप नहीं जा सकते, आप इधर ही रहो। तो सनातन गोस्वामी पाद को उधर 2-3 दिन और रुकना पड़ा। इतना प्रेम वह सनातन गोस्वामी से इतना प्रेम करते थे व्रजवासी कि सारे व्रज के वासी जो सनातन गोस्वामी पाद गुरु मानते थे। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद का जो तिरुभाव दिवस है, मैंने कहा था जो गुरु पूर्णिमा के दिन ही उनका तिरुभाव दिवस हुआ, वो सबसे बड़ा गोवर्धन परिक्रमा होता है, सारे व्रजवासी उसमें भाग लेते हैं। और उनसे पूछो आप क्यों कर रहे हो, गुरु पूर्णिमा है ना, तो बोलो आपका गुरु कौन है, सनातन गोस्वामी पाद है। आज तक 500 साल के बाद भी वो उनको सनातन गोस्वामी करके बोलते हैं, गोस्वामी का आज परिक्रमा है, आज उनका तिरुभाव दिवस है। तो इसका इतना बड़ा प्रभाव रहा। तो आपको ये जो रूप गोस्वामी पाद का, जीव गोस्वामी पाद का जो किस प्रकार उनका उद्धार हुआ, जीव गोस्वामी के विषय में जब चर्चा करेंगे तब किया जाएगा। तब सनातन गोस्वामी पाद को मदन मोहन का विग्रह कैसे प्राप्त हुआ उसका थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप सब प्राय वृंदावन जाया करते हो, आप जब मदन मोहन मंदिर में जाओगे तो मदन मोहन का विग्रह कैसे प्रकट हुआ, सनातन गोस्वामी को कैसे प्राप्त हुआ, वो स्टोरी आप पूरा सुने होंगे, लेकिन फिर भी लीला के अंतर्गत तो सिलेबस तो आता ही हो, चर्चा करता हूँ। एक बार सनातन गोस्वामी पाद यमुना के तट में जा रहे थे मथुरा के नज़दीक में, तो उन्होंने देखा कुछ बच्चे खेल रहे उधर, और दूर से सनातन गोस्वामी देखा, एक तो सुंदर, अति सुंदर बालक है, घुंघराले बाल है, मोरपंख है, और एक काला है गोरा है और कृष्ण जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। आप सनातन गोस्वामी को देखे बड़े मोहित हो गए, उनके साथ में और बच्चे थे, और सनातन गोस्वामी जैसे उनकी ओर जा रहे थे तो तुरंत ये बच्चे सब भाग गए, सनातन गोस्वामी पीछे पीछे गए, वो सब लोग एक घर में पहुंचे। जैसे घर में पहुंचे, ब्राह्मण का घर था, तो उधर उनकी माँ क्या सबको बच्चों को बिठाई, सबको खिला रही थी। तब सनातन गोस्वामी ने देखा कि ये दो साधारण नहीं है, ये तो कृष्ण है, बलराम है। तब चोबे को उन्होंने कहा, उधर के जो ब्राह्मण हैं, ये तो साक्षात भगवान है, आपके आराध्य देव है। उन्होंने कहा हाँ भगवान है। तो आप ऐसा कैसे पूजा करते हो, उनको सबको खिलाते हो, एक साथ अपने बच्चे की जैसे देखभाल करते हो, ये क्या है। उन्होंने कहा अभी क्या करें, कैसे करना है बताइए, सनातन गोस्वामी सब विधि बताया, देखो भगवान की सेवा जो है बड़े निष्ठा से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तब उस दिन से उन्होंने विग्रहों की सेवा अच्छी तरह से करना शुरू किया। असल में ये जो विग्रह थे कोई और विग्रह नहीं थे, अद्वैताचार्य का ही विग्रह है। अद्वैताचार्य के जो मदन गोपाल विग्रह है वही मदन मोहन के रूप में सनातन गोस्वामी ने पूजा किया था। वो अभी भी जो मदन मोहन के विग्रह के रूप में मदन मोहन मंदिर है, वो मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन का विग्रह जो अभी करौली में है, वो ओरिजिनली अद्वैताचार्य के आराध्य देव है मदन गोपाल करके। आप जब सेवा कुंज में जाएंगे, सेवा कुंज में जिस जाने से पहले थोड़ा सा लेफ्ट में एक दरवाज़ा पड़ता है, थोड़ा अंदर जाएंगे उधर आपको मदन गोपाल का मंदिर है, जो अद्वैताचार्य का भजन स्थली है, सीतानाथ मंदिर बोलते हैं उसको। तो उधर पौर्णमासी का भी मूल स्थान है, मूल केंद्र है। तो सनातन गोस्वामी पाद जैसे ब्राह्मण को उन्होंने कहा आपको ऐसा ऐसा पूजा करना चाहिए, तो ब्राह्मण ऐसा पूजा करना शुरू किया। तब सनातन गोस्वामी पाद के सपने में भगवान आए, ने कहा कि आप मुझे ऐसा पूजा करने के लिए बोलते हैं, आप ही करो, खुद आके पूजा करो मुझे। तो ब्राह्मण के सपने भगवान आके कहा ये जो मुझे जो है अभी वो जो साधु आए थे उनको दे देना। तो सनातन गोस्वामी पाद विचलित हो गए, वो ब्राह्मण आके सनातन गोस्वामी को आप ले लो, भगवान ने सपने में हमको आदेश दिया है। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि मैं तो साधु हूँ, भजन करता रहता हूँ, मेरा भी ठिकाना नहीं है मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ क्या करता हूँ, तो आप ही रखो। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, अगली बार सपने आके कहा नहीं मैं जाना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण आके ने कहा सनातन गोस्वामी को दे दिया। तब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी ने कहा भगवान से, देखो मैं जो मधुकरी मिलता वही खिलाऊंगा, उसमें अगर आप राजी हो तो आ सकते हो। भगवान ने कहा नो नो प्रॉब्लम, आपको जो भिक्षा मिलता है उसमें रहे, मैं संतुष्ट हूँ। मैं ब्राह्मण के घर में रहो, मक्खन वगैरह खाने को मिला, रोटी मक्खन वगैरह, अरे मैं तो भिखारी हूँ, मुझे सूखा रोटी मिलता है। तो भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम। एक दिन, बहुत दिन सूखा रोटी खिला रहे थे, एक दिन मदन मोहन जी ने कहा देखो कम से कम नमक तो दिया करो। सनातन गोस्वामी ने कहा मुझे मालूम था। आज नमक मांगोगे, कल सब्जी मांगोगे, परसों घी मांगोगे, मैं कहाँ से लेके आऊँगा। जो व्यवस्था करना आप ही कर लेना। जैसे सनातन गोस्वामी इस प्रकार कहा, ये प्रसिद्ध स्टोरी आप सबको मालूम है, कपूर करके था कृष्णदास कपूर, वो नमक को लेके मथुरा लेके जा रहा था, यमुना में एक बोट में लेके जा रहा था। तो समय अचानक ये जो मदन मोहन मंदिर है अभी उसके सामने उसका बोट अटक गया। तो ब्रजवासियों से पूछा अभी क्या करें, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ इधर साधु हैं वो आपको मदद करेंगे। ये कपूर जाके उन सनातन गोस्वामी ने पूछा कुछ मदद कीजिए। सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये सब चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ, भगवान जो है सबको देखभाल करते हैं, आप उनसे प्रार्थना करो आपको देखभाल करेंगे। तब सनातन गोस्वामी पाद के कहने पर कपूर ने प्रार्थना किया, जाके देखा तो वो जहाज छूट गया, जो फंसा हुआ जहाज है वो मथुरा जाके जब बेचने के लिए गया उसके अंदर नमक था, लेकिन जब बेचने गया तो नमक नहीं था, वो कर्पूर हो गया। कर्पूर तो 100 गुना महंगा है नमक से। जो भी प्रॉफिट आया उससे उन्होंने बड़ा अद्भुत मंदिर का निर्माण किया। अभी जो हम सनातन गोस्वामी का जो मंदिर देखते हैं, और एक जगह के तोड़ दिया, इसकी वजह से नया मंदिर बनाना पड़ा। लेकिन आपको ये विग्रह का जो स्टोरी आपको मालूम है, किस प्रकार औरंगजेब का अटैक की वजह से वो जयपुर गया, जयपुर से अभी करौली में है। जयपुर की बेटी जो है वो विग्रह से बहुत प्रेम करती थी, उन्होंने कहा कि दहेज के रूप में मुझे यही दो करके वो बेटी उसको लेके गई। तो इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी पाद अनेकों अनेकों अद्भुत लीलाएँ वो कर रहे थे। एक बार सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी दोनों ने खीर खाया, वो भी हम रूप गोस्वामी के लीला में हम चर्चा करेंगे। और एक बड़ा प्रसिद्ध लीला है सनातन गोस्वामी का, तो दो लीला सुना के समाप्त करता हूँ। एक है चकलेश्वर महादेव के पास लीला। सनातन गोस्वामी पाद जो है कभी कभी वो नंदगांव में वो पावन सरोवर में रहते थे, कभी कभी चकलेश्वर महादेव के साथ पास में रहते थे मानसी गंगा के तट पे। तब रोज ग्रंथों की रचना करते थे, उन्हें बहुत सारे मच्छर थे, उन्हें कहा कि अभी इधर नहीं रहना, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। अगला दिन उधर से निकल रहे थे तो समय चकलेश्वर महादेव शिवजी स्वयं ब्राह्मण का रूप लेके आए, उन्हें कहा कि आप मत जाओ। सनातन गोस्वामी कहा मैं इधर नहीं रह सकता, तुम बहुत मच्छर है, ना आप चिंता मत करो, आज एक दिन ट्राई करो, आज से मच्छर नहीं रहेगा। तो ठीक है आज रह गए। तो शिव जी ने बुलाया जो मच्छरों के जो देवता होते हैं, कहा कि सनातन गोस्वामी की संगति चाहिए, वो भजन करते तो बड़ा आनंद आता है। देखिए सनातन गोस्वामी महिमा देखिए कि शिव जी जो जिनके संगति चाहते हैं ऐसे सनातन गोस्वामी हैं। और एक लीला है पारसमणि का लीला है। एक भक्त जो है वो शिव जी से प्रार्थना किया, मुझे सबसे अमीर होना है, पारसमणि चाहिए, आपको बड़ा वेल्थ चाहिए, बहुत सारा ऐश्वर्य चाहिए, जाओ वो साधु के पास जाओ वो दे देंगे आपको। तो आए साधु के पास, आए सनातन गोस्वामी पास आए, उन्होंने कहा कि शिव जी ने मुझे भेजा है आपके पास, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, हाँ पारसमणि है मैं सुना, वो चाहिए मुझे। सनातन गोस्वामी ने कहा उधर कचरे का डब्बा है ना उसके अंदर पड़ा हुआ आप ले लो। तो वो लिया, अपने घर में जाके अलमारी के ऊपर रखा तो पूरा सोना बन गया। सोचा क्या कितना हर पूरा घर सोना हो गया, सोने से भर गया, लोहा जो है सोना हो गया। तो सोचने लगा कि ये जो सनातन गोस्वामी हैं ये पारसमणि इतना अद्भुत चीज़ है, उसको कचरे के डब्बे में फेंक के रखा है। जो व्यक्ति इसको कचरे के डब्बे में डाल सकता है उसके पास इससे महंगी चीज़ होगी, तभी तो कर सकता है। इसको जो कचरा मानता है उसके पास कितना अद्भुत चीज़ होगा। वो सोचते हुए आए ने कहा कि आपके पास कुछ से अद्भुत चीजें हो दीजिए। सनातन गोस्वामी ने कहा मैं दूंगा लेकिन उसकी कंडीशन है, तो पहले इसको गर्भना में फेंक के आना होगा। तो वो फेंक दिया, फेंक क्या बोला दीजिए, तो उन्हें जपमाला दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़ा और एक प्रसिद्ध लीला है, जब एक बार सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी में चर्चा कर रहे थे भगवान के अनेकों अनेक लीला के विषय में, उस समय रूप गोस्वामी पाद एक स्तव को रचना कर रहे थे जिसका नाम है चातु पुष्पांजलि। चातु पुष्पांजलि का वर्णन करते रूप गोस्वामी बड़े भावीभोर होके उन्होंने वेणिम व्यालंगणा फला फणा, तो उन्हें वर्णन किया राधारानी का सुंदरता का, राधारानी का अलग अंगों का सुंदरता का वर्णन करते करते जब सर का वर्णन करने लगे, सर के बालों का वर्णन करने लगे, कहा वेणी राधारानी की जो वेणी है वो कैसा है, व्यालंगणा फणा, व्यालंगणा मतलब जो सांप है उसके फण के बराबर है। तो सनातन गोस्वामी का बहुत दुख लगा, राधारानी का वर्णन वेणी का वर्णन सांप के फण के बराबर तुलना किया जाए, कैसे हो सकता है। रूप गोस्वामी कहा कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है ऐसा, रूप गोस्वामी नम्रता स्वीकार किया, चलो मैं चेंज करता हूँ। तो सनातन गोस्वामी पास निकल रहे थे, रास्ते में उधर गोविंद कुंड आया तो उधर नहाने के लिए अंदर गए, दूर से उन्होंने देखा बहुत सारे जो युवतियाँ नहा रही थी और एक युवती के शरीर से बहुत अद्भुत तेज आ रहा था और उस युवती के सर के ऊपर एक सांप ऐसा था। सनातन गोस्वामी कहा कि युवती से, हे बच के रहो, सांप आया सांप आया। तो नजदीक जाके वो बोलने वाले थे, उस समय सारे लोग गायब हो गए। तो सनातन गोस्वामी को समझ में आया ये कोई और नहीं है, श्रीमती राधारानी स्वयं है और ये मुझे शिक्षा देने के लिए कि रूप गोस्वामी ने जो लिखा है ये बराबर है, ये बात को सनातन गोस्वामी समझ गए। और भी अनेकों अनेकों बड़े प्रसिद्ध लीलाएं हैं और खास करके सनातन गोस्वामी पाद के जो ग्रंथ हैं वो उसके उल्लेखन हम थोड़ा सा कल चर्चा करेंगे क्योंकि समय हो गया है, क्योंकि आचार्य जो है प्रकट होकर अनेकों अनेकों लीलाएं करके हम शिक्षा देते हैं और उनकी शिक्षा अपने ग्रंथों में प्रस्तुत करते हैं। ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ने का समय नहीं है, पढ़ने के बाद ऐसा मौका नहीं होता है, चर्चा करने का इतना समय नहीं है अपने पास, लेकिन फिर भी ग्रंथों के बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। जैसे बृहद भागवतामृत चित सनातन गोस्वामी रचना के वो है क्या, उसका थोड़ा सा ग्रंथ परिचय वो सनातन गोस्वामी पाद के सिलेबस में बचा हुआ है, तो हम उसके द्वारा शुरू करेंगे और कल रूप गोस्वामी के विषय में हम चर्चा करेंगे। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। Yeah.